أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند درود پڑھ لیجیے گا. برادران محترم، اگرچہ یہ جو آپ کا شیڈول ہے تھوڑا سا اس کے ہٹ کے، کچھ برادران نے ہماری ذمہ داری سپورٹ کی اس حوالے سے، یہ گفتگو کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن جو ہمارا نقطۂ نگاہ ہے کچھ اور کچھ خاص چیزیں بیان کرنے کے حوالے سے، ویسے اس کی ضرورت شاید میں محسوس نہیں کر رہا، لیکن ایز آ تعارفاً میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر دیتا ہوں صرف اپنے حوالے سے کہ ہم ماسٹرز کر رہے ہیں فزکس کے اندر، اور یعنی ایم ایس سی فائنل، اور بالکل ابھی فارغ ہونے والے ہیں جسٹ ایک مہینے کے اندر. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا الحمدللہ پروردگار نے توفیق عطا کی کہ گزشتہ 5 سے 6 سالوں سے ہم جو ہے نا باقاعدہ دینی فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں مدارس کے اندر باقاعدہ. اب وہ ٹائم کی مینجمنٹ ہم نے کیسے کی، یہ ایک ہمارا اپنا طریقہ کار رہا. بہرحال تو برادران کے سامنے ہم نے ایک خاص قسم کا موضوع پیش کیا تھا کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، لیکن کائنات کی تخلیق جو ہمارا موضوع رہے گا میں اس کو تھوڑا سا بریف کرنا چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے. کائنات کی تخلیق قرآن مجید کی نگاہوں میں، مسلمین کی نگاہوں میں، سائنس کی نگاہ میں، اگرچہ جو ہم نے شروع میں رکھا وہ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن کی تخلیق، سائنس، قرآن اور معصومین کی نگاہ میں. اب اس سے ہمارے بعض دوستوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ آنے پائے کہ ہم نے سائنس کو پہلے رکھا اور قرآن کا نام بعد میں لیا اور معصومین کا نام بعد میں لیا. یہ صرف اس حوالیہ سے ہم نے یہ جو ارینجمنٹ کی تھی، یہ ترتیب رکھی، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اس لیکچر کے دوران سب سے پہلے جس کے حوالے سے گفتگو ہوگی تخلیق کائنات سائنس کی نگاہ میں، اس کے بعد فردر ہم اس کو لے کے آئیں گے قرآن مجید کے اندر، اور پھر اس کے بعد معصومین کی ذوات مقدسہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. ٹائم کی گنجائش بھی بہت زیادہ کم ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم اسی مختصر ٹائم کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا طریقہ کار یہی رہے گا کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کاسمولوجی، خود یہ کاسمولوجی کیا ہے، پہلا ہمارا سلسلہ اس حوالے سے رہے گا. اس کے بعد ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کاسمولوجی کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کے حوالے سے. اس کے بعد جو ایکچوئل ایک ماڈل ہے ہمارے سامنے جدید ترین کے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، بگ بینگ ماڈل، بگ بینگ تھیوری جس کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کہ یہ بگ بینگ تھیوری ہے کیا، اس کو تھوڑا سا وضاحت کرنے کے بعد پھر ہم اصل میں جائیں گے کہ قرآن اور کریشن آف یونیورس کے، کائنات کی تخلیق کے حوالے سے قرآن کی کیا معلومات ہیں اور قرآن کی آیات اس حوالے سے کیا کیا چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں یہ، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ہم ٹچ دیں گے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. ان کی ذات ببرکت کو اور آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پروردگار سے توفیق طلب کرتے ہوئے کہ اے معبود برحق ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو صحیح طرح سے بیان کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کو صحیح طرح سے شیئر کر سکیں. آئیے سب سے پہلے ہم اس چیز کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید تفصیلات انشاءاللہ آپ لوگ اس کو مزید بہتر طور پر سمجھ جائیں گے، لیکن ہم یہ ایک ریکویسٹ آپ سے کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ شروع میں کوئی نظریہ آپ بالکل ابھی اپنے ذہنوں میں نہیں بنائیے گا، جب ہماری یہ بات ختم ہو، یہ لیکچر انشاءاللہ جب اختتام تک پہنچے، تو پھر اس کے بعد آپ اپنے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور لانے کی کوشش کیجیے گا، ایک بات. دوسری بات، پوری کانسنٹریشن کی ضرورت رہے گی انشاءاللہ کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ اسے سماعت فرمانے کی کوشش کریں گے، اور اگر کوئی چیز واضح نہ ہو سکے اس لیکچر کے دوران تو انشاءاللہ آخر میں میرے خیال میں سوالات و جوابات کا سیشن بھی ہوتا ہے، تو اس کے دوران بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کاسمولوجی کیا ہے، واٹ از کاسمولوجی. یہ آپ کے سامنے یہ جو پورا کا پورا ماڈل بیان کیا گیا ہے یہ اصل میں کائنات کی تخلیق کی ابتدا کو بتا رہا ہے. یہ تقریباً ہمارے سامنے یہ جو ماڈل پیش کیا گیا 1965 کے اندر مائکرو ویو بیک گراؤنڈ اس کو کہا جاتا ہے, اس کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ پوری کی پوری کائنات کے حوالے سے یعنی آغاز میں کچھ اس طرح کی کنڈیشن تھی. لیکن ابھی ہم یہاں تک پہنچے نہیں ہیں, ابھی ہمارا کوشچن وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ واٹ از کاسمالوجی, کاسمالوجی کیا ہے. اصل میں یہ ورڈ نکلا ہے کاسموس سے, کاسموس کا مطلب ہے عالم, کائنات. اسی سے آپ نے شاید ایک ورڈ سنا ہو, اکثر سنا ہوگا کہ کاسمک ریڈیشنز, کائناتی شعائیں. کیا میننگ ہے اس کے؟ جب کائنات بنی تھی تو اس وقت کس قسم کی ریڈیشنز یا شعائیں نکلی تھیں جن کا اخراج ہوا تھا, ریڈیئیٹ ہوئی تھیں, کس طرح کی وہ شعائیں تھیں؟ اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کاسمک ریز بھی کہا جاتا ہے. اگرچہ یہ پورا کا پورا ہمارے سامنے گراف موجود ہے, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ریز سے مراد صرف یہ روشنی اور لائٹ. یاد رکھیے گا یہ فقط نہیں ہے, تقریباً ہمارے سامنے, اگر میں آپ کے سامنے وہ, کیونکہ انشاءاللہ پروردگار نے پھر کبھی توفیق عطا کی تو ہم آپ کے سامنے بیان بھی کریں گے کس طرح کی ریڈیشنز موجود ہیں, کس کس طرح کی شعائیں موجود ہیں. تقریباً 14 قسم کی ہیں, ان میں سے ایک وہ ہے جو ویزیبل ریجن ہے ہمارے سامنے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ صرف ایک ریجن ہے. اسی کے اندر بھی کافی اور کلرڈ لائٹس موجود ہیں, وہ آپ کے انشاءاللہ معلومات میں ہوں گی وہ باتیں. بہرحال اس کے علاوہ اور اس میں سے ایک اہم ترین ہے کاسمک ریز جو کائنات کی ابتدا کو بتا رہی ہیں. اب کاسمولوجی کیا ہوئی؟ اصل میں کاسمولوجی برانچ ہے ایسٹرانومی کی, ایسٹرانومی یعنی علم فلکیات. اچھا اسی کے بالمقابل آپ نے ایک ورڈ سنا ہوا ہوگا اکثر, علم نجوم ہم اس کو کہتے ہیں, جو ہمارے اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. یہ علم نجوم ایک دوسری چیز ہے, اگرچہ نجم کہا جاتا ہے یہ فلک کو یعنی آسمانوں کو, نجوم ستاروں کو, یہ ستاروں سے. اس علم نجوم کی بنیاد پر اصل میں پریڈکشن کی جاتی تھی, بہت پہلے پیشن گوئیاں کی جاتی تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. یہ علم نجوم کم از کم اس چیز کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتا ہے, اور باقاعدہ روایت کے اندر اس طرح کی چیزوں سے منع بھی کیا گیا ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جس علم کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایسٹرانومی کی ایک برانچ, پوری ایسٹرانومی نہیں, علم فلکیات جس کا ہم نام رکھتے ہیں فلک سے ریلیٹڈ, فلکیات یعنی آسمانی علوم سے ریلیٹڈ جو بھی علم ہے اس کو ایسٹرانومی کہا جاتا ہے. اور اسی ایسٹرانومی کی ایک چھوٹی سی برانچ ہے جس کو ہم کاسمولوجی کہتے ہیں. اب آپ علم کی وسعت کا اندازہ بھی کرتے جائیے گا اور یہ بھی دیکھتے جائیے گا کہ اس کے اندر کیا کیا ہمارے سامنے کیٹیگریز موجود ہیں. کاسمولوجی میں نے ابھی کہا کہ کاسموس سے مراد کائنات, عالم, اور لوجی اس کے بارے میں معلومات, اس کے بارے میں غور و فکر, اس کا علم یعنی کائنات کا علم. اب ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے اس کی, ڈیفینیشن کی اگر ہم کہیں تو وہ کچھ اس طرح سے جا کے بنے گی کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی, ایک یہ بات. دوسری بات, تخلیق ہونے کے بعد اس کی ایولیوشن کیسے ہوئی, کائنات کا ارتقاء یہ کیسے ہوا. یہ مین بنیادی ترین سوالات ہیں جو کاسمولوجی کی بیسکس میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ کائنات کے اندر جو اتنی بڑی بڑی ہمیں ہیولنی باڈیز نظر آ رہی ہیں, بہت بڑی بڑی, یہ جو اجسام نظر آ رہے ہیں, پلانٹس, اسٹارز وغیرہ یہ نظر آ رہے ہیں, ان کی ڈائنامکس کیا ہے, ان کی حرکت کیسے ہے, ان کا وجود کیسے ہوا, یہ ساری کی ساری باتیں بعد میں آتی ہیں. سب سے بنیادی ترین سوال جو اس کے اندر آتا ہے کاسمولوجی کے اندر, جو اس کی ڈیفینیشن میں باقاعدہ شامل ہے, وہ یہ ہے کریشن آف یونیورس کیسے ہوئی, ایک بات. دوسری بات, اس کی ایولیوشن کیسے ہوئی, اس کا ارتقاء کیسے ہوا. یہ ہے ہمارے پاس واٹ از کاسمولوجی, یعنی کاسمولوجی ہے کیا, اس کی ڈیفینیشن کی حد تک یہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. اب اس کے بعد نیکسٹ ہمارے سامنے ایک اور چیز آئے گی, ہسٹری آف کاسمولوجی. کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اس کی ہسٹری کیا ہے, آیا کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنا کیا یہ فقط اور فقط موجودہ جو ہمارا دور ہے, جو ماڈرن فزکس کا دور ہے, جو ماڈرن سائنس کا دور ہے, کیا فقط اسی کے اندر یہ اس طرح کا آغاز ہوا تخلیق کائنات کے حوالے سے غور و فکر کرنا, یا نہیں اس سے پہلے بھی کچھ اور تھا؟ تو عزیزان محترم, آپ حیران ہوں گے کہ واقعاً جب سے انسان اس زمین کے اوپر وجود میں آیا, جب سے اس نے زمین کے اوپر قدم رکھا, اس وقت سے اس نے کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا. اچھا یہ بھی میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کاسمولوجی, اگرچہ یہ ٹرمینالوجی پہلے استعمال نہیں کی جاتی رہی, وہ ہر ایک لینگویج کے لحاظ سے, اپنے اپنے دور کے لحاظ سے, ہر ایک قوم اپنے اپنے لحاظ سے, اس کے لحاظ سے جو مناسب ورڈز تھے, جو الفاظ تھے, وہ استعمال کرتی رہی. कॉस्मोलॉजी ये अब आई तकरीबन हमारे सामने इसी 20वीं सदी के अंदर बाकायदा इस इल्म का आगाज हुआ। इससे पहले कुछ और नामों के साथ अपने अपने इलाकों के अंदर जो अल्फाज थे वो इस्तेमाल किए जाते थे कायनात की तख्लीक के हवाले से। अब जब हम इसमें थोड़ा सा तारीख के अंदर हम जाते हैं गुज़िश्ता अदवार के अंदर, तो सबसे पहले कायनात के हवाले से जो मॉडल, अच्छा मॉडल जब हम बात कर रहे हैं तो इससे मुराद यह है कि पूरी कायनात का मॉडल क्या है। जैसे हम एटॉमिक मॉडल का इसकी बात कर रहे होते हैं कि एटम का मॉडल क्या है, मसलन उसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उसके इर्द गिर्द प्रोटॉन्स होते हैं, ये सारी की सारी बातें अपनी जगह पर, ये कहलाता है मॉडल। बिल्कुल इसी तरह से कायनात के हवाले से मॉडल के पूरी कायनात का वजूद कैसे हुआ और ये कायनात कैसे किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, इसकी शक्ल सूरत कैसी है, हम इस हवाले से आपके सामने बयान करेंगे कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या क्या लोगों ने इसके हवाले से नज़रियात पेश किए हैं और कौन कौन से अफराद ऐसे हैं कि जिनका नज़रिया गोया आज के दौर की इस मॉडर्न साइंस के साथ भी किसी ना किसी हद तक कुछ मुताबिकत रखता है। बहरहाल क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कायनात की तख्लीक कैसे हुई, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, उसके अंदर कौन कौन से अज्जा हैं बुनियादी तरीन कायनात के, ये हम इस हवाले से बयान कर रहे हैं ताकि आपके सामने ये बात भी वाज़ेह हो जाए। असल में छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें बन जाती हैं। मसलन ये बात कि इसकी हिस्ट्री क्या रही कि कायनात के जो बुनियादी तरीन अज्जा हैं वो कौन कौन से थे, कायनात किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। आपने यूनानियों का वो नज़रिया सुना हुआ होगा कि आग पानी मिट्टी और हवा ये बुनियादी तरीन अनासर उनके निगाह में थे। अगरचे इसी दौर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी ये नज़रियात मौजूद थे, गालिबन ये जो अब हम आपके सामने बात कर रहे हैं तकरीबन कोई 4.5 से 5 हज़ार साल पहले की बात कर रहे हैं, जब आर्यन की यहाँ पर आमद हुई थी हिंदुस्तान के अंदर बरे सगीर के इन इलाकों के अंदर, उस वक्त के कुछ नज़रियात थे, उन्होंने जो बुनियादी तरीन अनासर थे उनको पाँच कहा था, पाँच अनासर की बात की थी। हम इस हवाले से बात नहीं कर रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है कि कायनात के बुनियादी तरीन अज़ा क्या है, इस हवाले से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कायनात का मॉडल कैसे पेश किया गया। कायनात की पूरी हयात है, जो सूरत है, जो शक्ल सूरत है वो क्या है, इस हवाले से हम आपके सामने मॉडल बयान करने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इस चीज़ के शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बताते चलें कि पुराने दौर के अंदर जितने भी अदवार गुजरे हैं तारीख के अंदर, वहाँ पर कायनात की तख्लीक का जो बुनियादी तरीन आगाज़ हो रहा है वो या तो मज़हब के अंदर इस हवाले से डिस्कस की गई है या फ़लसफ़े के अंदर, फ़िलासफ़ी के अंदर, बाकायदा इल्म की सूरत में कोई साइंसदानों ने इस पर, जो उस वक्त के साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पर काम नहीं किया, ना उनके हवाले से ये चीज़ें थीं, बल्कि इसको पार्ट समझा जाता था रिलीजियस का, मज़हब का या फ़िलासफ़ी का, फ़लसफ़े का। ये भी एक अलग बात है कि फ़िलासफ़ी के अंदर भी जो कायनात की तख्लीक के हवाले से बातें होना शुरू हुई उसके आगाज़ भी, उसका आगाज़ भी, नुक्ता आगाज़ भी वही मज़हब है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कीजिएगा कि कायनात के हवाले से गौर व फिक्र करने की जो सबसे पहले आदत और फितरत इंसान को दी वो मज़हब ने दी। अब वो मज़हब कहाँ कहाँ पर रहे, उनकी किताबों के अंदर किस किस तरह की चीज़ें थी, ये अपनी जगह पर एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है और इसके ऊपर काफ़ी बहस की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं छेड़ रहे हैं। हम ये बयान करना चाह रहे हैं कि ये याद रखिएगा कि ये जो इल्म कॉस्मोलॉजी हमारे सामने आया कायनात की तख्लीक के हवाले से, ये पहले गुज़िश्ता अदवार के अंदर बाकायदा साइंस के तौर पर इसको नहीं लिया जाता था, बल्कि ये मज़हब का हिस्सा था, मज़हब के अंदर इस पर डिस्कस की जाती थी या उसके बाद फ़लसफ़े के अंदर, फ़िलासफ़ी के अंदर। अब उसी मज़हब से अब आप देखिएगा कि मज़हब ही वो नुक्ता आगाज़ रहा है, वहाँ से आकर ये सारी की सारी चीज़ें आगे फ़लसफ़े का बहस बनती है और फ़िलासफ़र हज़रात इसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस हवाले से सबसे पहला नज़रिया जो हमें नज़र आता है बाबुल की तहजीब के अंदर। याद रखिएगा बाबुलियन ये काफ़ी पुरानी तरीन तहजीब गुजरी है, गालिबन जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर। बाबुल का बुतखाना एक बहुत अजीम तरीन बुतखाना शुमार होता था उस वक्त के दौर के लिहाज से, और इन्हीं के दौर के अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद थी, मसलन सूरज परस्ती भी मौजूद थी, मसलन बुध परस्ती भी मौजूद थी, चांद परस्ती भी मौजूद थी, सितारा परस्ती भी मौजूद थी, और इसी के साथ साथ शख्सियत परस्ती भी मौजूद थी नमरूद की वजह से, यानी शख्सियत परस्ती वो सारी की सारी जनाब इब्राहिम का दौर। और गालिबन इस हवाले से अगर हम एस्टिमेट करना चाहें कि वो कितना ज़्यादा अरसा जाके बनता है आज से पीछे, तो तकरीबन 5000 साल। अब ये हम जो बात कर रहे हैं ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि 5000 साल, ये नहीं, गालिबन इसी के अप्रॉक्सीमेटली हम ये बात कर रहे हैं, गालिबन इतना ज़्यादा पीरियड बनता है गुज़िश्ता अदवार में अगर हम जाके देखें तो। बाबुल के अंदर सबसे पहले कायनात का जो मॉडल पेश किया गया वो कुछ इस तरह से था, कहा कि पूरी की पूरी कायनात एक फ्लैट डिस्क की मानिंद है। जैसे आप डिस्क लेते हैं एक छोटी सी, बिल्कुल फ्लैट टाइप किस्म की इस तरह की चीज मौजूद है, पूरी की पूरी ये कायनात यही चीज है। और इसके साथ क्या है, कहा कि ये समंदर के ऊपर तैर रही है। ये कायनात की तखलीक के हवाले से हमें बाबुल के अंदर ये नजरिया नजर आता है, कहा फ्लैट डिस्क की मानिंद है, बिल्कुल प्लेन सर्कुलर है। ये नजरिया भी किसी हद तक कुछ बेहतर था, स्फेरिकल टाइप, लेकिन समंदर के ऊपर तैर रही है। बहरहाल हम सिर्फ बयान कर रहे हैं कि वो क्या है, इसके अंदर क्या क्या खराबियां हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ये सबसे पहला नजरिया हमें नजर आता है बाबुल के अंदर। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो यूनान की तहजीब हमें, ग्रीक सिविलाइजेशन जो हमें नजर आती है, इंतहाई अहम तरीन तहजीब रही है, खुसूसन इल्मी हवाले से। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े फिलासफर पैदा हुए हैं, ये जो अफलातून का नाम लिया जाता है या अरस्तू का नाम लिया जाता है या इसी तरह सुकरात का नाम लिया जाता है, इसी तरह डेमोक्रेटिस डेमोक्रेटिस जिसको कहा जाता है, ये सारी की सारी शख्सियत ये यूनान से वाबस्ता अफराद हैं। यूनान के अंदर भी मुख्तलिफ इलाके, लेकिन हम इन इलाकों को नहीं बयान कर रहे हैं, सिर्फ ये बयान कर रहे हैं कि इनके अंदर क्या नजरिया रहा मॉडल कायनात के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे आप हैरान होंगे कि इनके अंदर तकरीबन दो तीन नजरियात रहे मुख्तलिफ किस्म के। सबसे पहला नजरिया इसके हवाले से कि कायनात क्या, किस तरह से वजूद में आई, किस तरह से बनी, अजीब वरीब नजरिया है। तकरीबन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 611 साल कबल मसीह की मैं ये बात कर रहा हूँ, यानी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आज से तकरीबन 2700 से 2800 साल पहले, लगभग 3000 साल आप कह सकते हैं। आना गजीमेंडर एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनके फिलासफर हैं आना गजीमेंडर, उसने कायनात की तखलीक के हवाले से बुनियादी तरीन नजरिया हमारे सामने पेश किया। और वो नजरिया क्या था, उसने कहा कि ये पूरी की पूरी कायनात शुरू में लामुतनाही और लामहदूद चीज थी। लामुतनाही से मुराद जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, लामहदूद जिसकी कोई हदबंदी नहीं थी, एक चीज थी बहरहाल लामहदूद थी लाइंतहा थी। हुआ क्या कि वो सारी की सारी चीज सिमटना शुरू हुई, इकट्ठा होना शुरू हुई, इकट्ठा होके अब वो एक स्टार की सूरत में, एक सितारे की सूरत में हमारे सामने आए। और फिर इसी के अंदर मजीद तब्दीलियां आना शुरू हुई और बाकी के सारे असाम बनना शुरू हो गए। अब आप देखिएगा उनका नजरिया क्या, लामुतनाही चीज थी, लामहदूद थी, बस थी सही कोई चीज, क्या थी ये नहीं मालूम। आगे चल के हम आपके सामने बयान करेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा कि आज के साइंटिस्ट भी वो चीज क्या थी इसको बयान नहीं कर सके अभी तक भी। अब उस बंदे की आप जहानत का अंदाजा कीजिएगा कि जो आज से 2700 से 2800 साल पहले यही बात कह रहा है, आना गजीमेंडर के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, लामहदूद चीज थी। उसने सिर्फ लामहदूद का जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो आज की मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के अंदर आकर वो वर्ड तब्दील हो गया, क्या चीज थी उसके निगाहों में लामहदूद चीज थी। इकट्ठे होना शुरू हुई, सितारा बना, और फिर इसी के अंदर मजीद तब्दीलियां आना शुरू हुई और बिलाखिर ये चीजें मुख्तलिफ असाम की सूरत में, जैसे कि कायनात के अंदर हमें बहुत सी बॉडीज इस वक्त नजर आ रही हैं, फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं से जो है ना बनने का आगाज हो गया। ये नुक्ता निगाह था किसका, अलेक्जेंडर का। इसके फौरन बाद थोड़े से अरसे के बाद गालिबन जनाब ईसा की विलादत से कोई 450 साल पहले उनके अंदर एक यूडॉक्सिस नाम के एक साइंटिस्ट उनके फिलासफर नजर आते हैं, उसने फिर एक और नजरिया पेश किया था। अच्छा, इस नजरिए के हवाले से मैं ये भी बताता चलूं कि गालिबन आप में से बहुत से दोस्तों ने एक किताब है, मशहूर तरीन किताब है फलसफे की, आगा मुल्ला सदरा के, सदरुद्दीन शिराजी की, मुल्ला सदरा की असफार अरबा के नाम से, अक्सर आपने शायद मुकर्रीन से इसका नाम भी सुना होगा, ये फलसफे की अहम तरीन किताब है। उसके अंदर भी आगा मुल्ला सदरा ने शुरू के अंदर ही जब आगाज़ हो रहा है इसी किताब का तो उसके अंदर भी इसी छोटे से नज़रिए का तस्करा किया, लेकिन उन्हीं फिलासफर की तरफ निस्बत देते हुए, अपना नज़रिया बयान नहीं किया बल्कि उन्हीं की तरफ कि यूनान के अंदर इस तरह का नज़रिया था एक छोटा सा इशारा किया था। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था खिरक और अल्तियाम का, इसके क्या मीनिंग है ये मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ। इसने क्या नजरिया पेश किया कायनात के मॉडल के हवाले से, उसने कहा कि कायनात के अंदर जितने भी हमें प्लैनेट्स या स्टार्स वगैरह नजर आ रहे हैं उन सब का मरकज और महवर जमीन है, जमीन दरमियान में है और बाकी सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। और क्या है? वो कह रहे हैं कि जमीन स्टेशनरी है, रुकी हुई हालत के अंदर है, बाकी सारी की सारी चीजें इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। और कायनात की तखलीक के हवाले से जब हमने बात की कि आसमान कितने ज्यादा हैं, तो उसने तशबीह दी थी, कहा कि जैसे प्याज के छिलके होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये परतें, ये तह दर्द है, एक पहले करीब तरीन मरकज के करीब तरीन ये एक सतह, उसके बाद ये एक सतह, उसके बाद ये एक सतह, इस तरह से उसने निस्बत देने की कोशिश की। कहा कि गोया कायनात की तखलीक के हवाले से मरकजी नुकता जमीन, उसके बाद प्लैनेट्स, और पूरे आसमान की नौइयत किस तरह की है, तह दर तह, इस तरह से प्याज के छिलकों के माने एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुए हैं, ये सारे के सारे कायनात के ये कुर्रे या कायनात की ये सारी की सारी परतें तह दर तह। इसी को कहा जाता है खिरक और अल्तियाम, जो अभी मैं कह रहा था आगमुल्ला सदरा ने भी इसके हवाले से ये वर्ड इस्तेमाल किया शुरू के अंदर ही, यानी खुतबा जैसे ही मुकदमा होता है किताब का, उसके फौरन बाद जो है ना उन्होंने इस वर्ड को भी इस्तेमाल किया, ये उन्हीं की तरफ निस्बत देते हुए कि उनका नज़रिया इसी तरह का था कि प्याज के इस तरह के छिलके हुआ करते हैं और वो तह दर तह एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, तो कायनात की तख्लीक का ये दूसरा नज़रिया यूनान के अंदर हमें नज़र आता है। अच्छा, इसके बाद हमें एक तीसरा नज़रिया नज़र आता है। अजीबोगरीब बात यह है इस हवाले से कि इस नज़रिए को बयान करने वाले वो जो खुद फिलासफर हैं उनकी अपनी कोई बुक नज़र नहीं आती, लेकिन उसको जिस शख्स ने हमारे सामने कोड किया वो इंतहाई अहम तरीन शख्सियत और जानी पहचानी शख्सियत, आज हमारे नौजवानों के सामने भी बल्कि मैट्रिक लेवल पर भी उसका नाम लिया जाता है, अर्शमीदस का, अर्शमीदस का। इसने अपनी एक बुक के अंदर उनका नाम लिया और बताया कि उसका नजरिया क्या था। अब आप अंदाजा कीजिएगा ये इसी दौर के लगभग अब हम बात कर रहे हैं, जनाब ईसा की विलादत से तकरीबन 300-350 साल पहले का ये नजरिया सारा का सारा अर्शमीदस ने, उसने अपनी एक किताब के अंदर इनका नाम लिया, इनका नाम था एरिस्टॉर्चस, एरिस्टॉर्चस इनका नाम लिया, और इनके हवाले से जो उसने नजरिया दिया वो क्या देखिएगा। अब आप देखिए इर्तिका भी हो रहा है, शुरू से बाबल की तहजीब, यूनान के अंदर नजरिया, पहला नजरिया, उसके बाद नजरिया, उसके बाद अब ये नजरिया। उसने अपने किंग को, बादशाह को लिखते हुए अर्शमीदस ने अपनी बुक के अंदर कहा कि ए किंग, ए बादशाह, एरिस्टॉर्चस ने ये जुमले कहे हैं, मैंने उसकी किताब के अंदर पढ़ा है, अर्शमीदस कह रहे हैं, उसने कहा कि ये जितने के जितने फिलासफर अफराद यहां पर मौजूद हैं और वो जितना कायनात को समझ रहे हैं, कायनात इससे बहुत बड़ी है, इन लोगों ने महदूद किया है फकत और फकत जमीन की हद तक और उसके इर्द गिर्द मूव करने वाले ये जो प्लैनेट्स और स्टार्स जो हमें नजर आ रहे हैं, इन्होंने महदूद किया यहां तक, जबकि ऐसा नहीं है, कायनात इससे बहुत वसी है। अब आप देखिएगा उस वक्त के दौर का एक नजरिया कि भाई कायनात इससे बहुत ज्यादा वसी है जितना ये इसे समझ रहे हैं, एक बात। उसके बाद क्या दूसरी बात उसने कही, कहा कि ये जो नजरिया है कि जमीन मरकज में है, ऐसा नहीं है, बल्कि मरकज में सूरज है, हमारा ये सोलर सिस्टम का ये सूरज मौजूद है, शम्स मौजूद है, कहा कि ये मरकजी तरीन नुक्ता निगाह है और ये साकिन है, उसके नजरिए के मुताबिक ये मूव नहीं कर रहा जबकि जमीन हमारी इसी के गिर्द मूव कर रही है। अब आप अंदाजा कर रहे हैं यानी कितने सौ साल पहले इसका नजरिया कुछ ज्यादा बेहतर हुआ, ये इर्तिका है, ये एवोल्यूशन है। बारह, अब वो कितनी हद तक सही था हम इस बात को नहीं छेड़ रहे, ये नजरिया भी हमारे सामने अब मौजूद रहा एरिस्टॉटल का, अब आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह का। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सी चीजें होती रही, सारे के सारे कुछ नजरियात आते रहे, कुछ बनते रहे, कुछ बिगड़ते रहे, ये सारी की सारी चीजें होती रही। जो मॉडर्न साइंसिस का बाकायदा अब तक हम कह रहे थे कि ये रिलीजियस के अंदर और फलसफे के अंदर ये बातें की जा रही थी, यानी यूनान के अंदर भी ये जो बातें की जा रही हैं सारी की सारी, ये फलसफे के अंदर ये बातें की जा रही कि कायनात का मॉडल क्या है, लेकिन बाकायदा इसको साइंस की ब्रांच के अंदर लाना, बाकायदा इसको साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, इसका आगाज कब हुआ, गालिबन 16वीं सदी के अंदर, मशहूर तरीन शख्सियत हैं कोपरनिकस, इसने सबसे पहले यह नजरिया पेश किया था कि बाकायदा जमीन मूव कर रही है सूर्य के गिर्द, और सूरज के हवाले से भी कुछ उसने अपने लाभ बताए थे, और कायनात के अंदर मूव करने वाली जो जितनी बॉडीज हमें नजर आ रही हैं उसके हवाले से भी कुछ उसने कवानीन हमारे सामने पेश किए थे, वो सारे के सारे किताबों के अंदर मौजूद हैं। ये सबसे पहले ये काम तरीका का जो इसने अख्तियार किया, यहां से आकर उसने इसको साइंस के अंदर बाकायदा लाने की कोशिश की, अब तक जो मौजू कायनात की तखलीक का फलसफे और रिलीजियस के अंदर मजहब के अंदर जिसको डिस्कस किया जा रहा था, अब आकर उसने इसको साइंस के अंदर शामिल करना शुरू किया और इस तरह से उसका आगाज हुआ 16वीं सदी के अंदर। फिर उसके बाद 17वीं सदी के अंदर मशहूर तरीन शख्सियत हैं सर आइज़क न्यूटन। न्यूटन के नाम से कौन शख्स आशना नहीं होगा, मेरे ख्याल में गालिबा तमाम हमारे बिरादर इस बात से आशना है। न्यूटन, इसने आकर बाकायदा कुछ लॉ हमारे सामने भी पेश किए जो आज तक भी मैट्रिक की किताबों के अंदर हमें पढ़ाए जाते हैं। उसकी एक बुक थी प्रिंसिपिया के नाम से, उसने उसके अंदर सारे के सारे ये लॉ बयान किए और इन तमाम प्लैनेट्स के हवाले से भी, स्टार्स के हवाले से भी उसने बयान करने की कोशिश की कि इनके अंदर भी बाकायदा मोशन है, ये हरकत हो रही है, ये सारी चीज़ें साकिन नहीं हैं बल्कि ये मूव कर रही हैं। यहाँ से आकर अब उसने बाकायदा साइंस के अंदर ये चीज़ इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई, यानी कायनात की तखलीक अब तक जिसको महदूद रखा जा रहा था अब उसको साइंस का भी बाकायदा एक पार्ट बना दिया गया। और इतनी हद तक ये बात अब आगे बढ़ी कि वो मजहब जो बाकायदा साइंस के अंदर कायनात की तखलीक का नज़रिया लाने वाला था उस मजहब को अलग कर दिया गया और कहा कि सिर्फ एज अ साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात होगी हम उसी को ही ले लेंगे। अंदाजा कीजिएगा फलसफे के अंदर, फलसफे को तो वैसे आज के दौर के अंदर गालिबन बेकार तरीन समझा जा रहा है, निचली सतह पे, ये मैं ये जो जुमला कह रहा हूँ निचली सतह के ऊपर ऐसे समझा जाता है जो फिलासफी होगा गोया, इशारा भी हम करते हैं कि बस इसका मतलब है जो फलसफी होगा वो गया गुजरा होगा बार। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी जब हायर सतह के ऊपर हम जाकर देखते हैं, मैं एक जुमला कह रहा हूँ इस हवाले से, हमारे एक टीचर भी रहे हैं जो कि हमें न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाते रहे हैं, डॉक्टर फेरोज साहब, शायद आप में से कुछ अफराद आशना भी हों से, कराची यूनिवर्सिटी के हैं, काफ़ी सीनियर टीचर हैं, उनके ये अल्फाज थे, उन्होंने कहा था कि फिजिक्स क्या है, फलसफा प्लस मैथ, मैथ है रियाजी जिसको हम कहते हैं उर्दू में, और प्लस उसके साथ है फिलासफी फलसफा, ये दो चीज़ों का मजमुआ है फिजिक्स। अगर मैथ्स को आप निकाल लें तो फिजिक्स क्या है, प्योर फलसफा है और कुछ नहीं है। और जब मैथ्स को आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर उसी के नतीजे में आप मजीद टेक्नोलॉजीज की तरफ भी जाएंगे, मजीद चीज़ें इन्वेंट करने की तरफ भी जाएंगे और ये सारी की सारी जितने भी इंजीनियरिंग की फील्ड हैं ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल ये अपनी जगह पर एक बैठ, तो हम कह रहे थे कि मॉडर्न साइंस के अंदर फिर इसको जब हिस्सा बनाने की बात शुरू हुई तो कहाँ से हुई, 16वीं सदी के अंदर कोपरनिकस के इस नज़रियात की रूह से, फिर उसके बाद सारा आइज़क न्यूटन का ये नज़रिया हमारे सामने, उसके जो लॉ है वो सारे के सारे हमारे सामने पेश, सबसे जदीद तरीन अंदाज में कायनात के ऊपर जो बहस करने की कोशिश की गई, मशहूर तरीन शख्सियत हैं आइंस्टाइन 1915 के अंदर, तकरीबन 1915 के अंदर सारा आइज़क न्यूटन, उनके बाद अहम तरीन जो नज़रिया आइंस्टाइन का, और इनकी भी खास तौर पर एक अजीब व गरीब थ्योरी थी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। ये अजीब व गरीब थ्योरी जब हमारे सामने आई तो इसके बाद कायनात की तखलीक के हवाले से बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ काम हुआ, बहुत ज्यादा तेजी के साथ प्रोग्रेस हुई। वह आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसी 20वीं सदी के अंदर जितना काम हुआ गुज़िश्ता 5000 सालों के अंदर इतना काम नहीं हुआ था, सिर्फ इसी हमारे गुज़िश्ता सदी के अंदर। अच्छा, सिर्फ ये कायनात की तखलीक के हवाले से या कॉस्मोलॉजी के हवाले से ये काम नहीं हुआ बल्कि बाकी भी साइंस की बाकी ब्रांचेस के अंदर भी इसी तरह से तेजी के साथ इर्तिका हुआ, ये बात वाकई तस्लीम शुदा है और हकीकत है, इसका इतराफ करने में कोई हर्ज नहीं है, जो हकीकत है वो हकीकत ही है। बारह इनके बाद आइंस्टाइन के बाद ये सारा का सारा सिलसिला बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हुआ। अच्छा, आइंस्टाइन के दौर तक जितने भी अफराद मौजूद थे, बड़े बड़े जो दिमाग मौजूद थे, वो भी ये समझते थे कि कायनात जिस तरह से है बस इसी तरह से है, हरकत को तस्लीम करते थे, ये मूवमेंट हो रही थी क्योंकि हम देख रहे थे चांद का आना जाना, सूरज का ये तुलू और गुरू, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे, मुशाहदा कर रहे थे, हाँ ये चीज़ें हो रही हैं यानी हरकत हो रही है, इसको तस्लीम किया जाता था। लेकिन पूरी कायनात कहाँ ये जाता था, अब आप अंदाजा करें 1915 तक जो बड़े बड़े दिमाग हैं इसी बात को तस्लीम कर रहे हैं, कायनात इसी तरह से हमेशा से है। इसके लिए लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया इटरनल का, ETERNAL, यानी दायमी, हमेशा से, हमेशा से इसी तरह का ये सिलसिला जारी है, कायनात को यही तस्लीम किया जाता था। आया कायनात का कहीं से आगाज भी हुआ था या नहीं हुआ था, या इसका कोई इख्तिताम भी होगा या नहीं होगा, इस हवाले से कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे सामने आई, उसके बाद से ये सारी की सारी बहस शुरू हो गई। हाँ भाई, ऐसा नहीं है, कुछ और काम भी इसके अंदर हो रहे हैं। कायनात का कॉन्ट्रैक्ट होना भी मुमकिन है, यानी सुकड़ जाना भी, और इसका एक्सपेंड होना भी, ये भी मुमकिन है, और ऐसा रहा है। यहाँ से आगे थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने वाली कुछ और शख्सियात भी हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो मैं आपके सामने अब नज़रिया बयान करने जा रहा हूँ वो हमारे सामने है बिग बैंग का क्वेश्चन, कायनात का नुक्ता आगाज़, जो इस वक्त का बेहतरीन नज़रिया हमारे सामने मौजूद है बिग बैंग का। वो क्या है, आइंस्टाइन के बाद किन किन अफराद ने इस पर काम किया और ये नज़रिया बयान किया, इसको हम बाद में बयान करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा, एक हमने कुछ क्लिप्स ली हुई थी कायनात की तख्लीक के हवाले से, कुछ हमारे सामने चीज़ें मौजूद थी, तो आप ज़रा उसका थोड़ा सा देख लेते हैं उसको, और इंशाल्लाह थोड़ी सी तवज्जो के साथ उसे देखेंगे, और इसके बाद हम मज़ीद चीज़ें भी बयान करने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोनॉमी वन ये तरह दे, दोनों दे दें,
इंसानी तारीख में माजी में हम सिर्फ यही मंजर अपने दिल में, कुछ हजार सितारे जो रात के मखमली अंधेरे में टिमटिमाते नजर आते थे, और यही मंजर है जो हम एक साफ अंधेरी रात को देख सकते थे। यहां तक के दूरबीन की इजाद ने यकायक मंजर बदल कर रख दिया। हमने करीब से सैयारों का मुशाहिदा किया, दूर दराज के सितारों और कहकशाओं को देखा, और कायनात के हैरत अंगेज राज खुलने शुरू हुए। आज हमारे पास नहायत जबरदस्त दूरबीनें हैं, जिनकी मदद से हमने कायनात में वो कुछ देखा जिसके मुतालिक माजी के साइंसदान तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आसमान के मुतालिक इंसान को हमेशा तजस्सुस रहा है। हमने आसमान का मुशाहिदा किया और इसकी गहराई और पेचीदगी ने हमें है। हमने आसमान का मुशाहिदा किया और इसकी गहराई और पेचीदगी ने हमें हैरान कर दिया। خلا ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کی حیرت انگیز دنیا ہے، جہاں وقت کو کئی اربوں کھربوں سالوں میں ناپا جاتا ہے اور فاصلوں کو کروڑوں کروڑوں اربوں کھربوں نوری سالوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار بظاہر ناقابل یقین معلوم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ کائنات محض تصوراتی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رب العالمین خدا کی عظیم و شان قدرت ہے جس نے انسان کی عقلوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کے اکثر سائنسدانوں کا یہ یقین ہے کہ ہماری کائنات آج سے 14 بلین سال قبل ایک بگ بینگ کے ذریعہ معرض وجود میں آئی۔ اس وقت تمام کائنات ایک سنگولیرٹی یعنی ایک واحد ہیولہ کی حیثیت رکھتی تھی، جس کا حجم سوئی کی نوک سے بھی ہزاروں گنا کم تھا۔ یہ مکمل طور پر بند اور تاریخ تھا۔ اس سنگولیرٹی یا واحد ہیولہ کا درجہ حرارت اور مقیب مادہ کی مقدار تصور کی جانے والی کسی بھی چیز سے زیادہ تھی۔ نظریات کے مطابق اس وحدت میں ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس میں مقیب مادہ بکھرنا شروع ہوا۔
درود پڑھ لیجیے گا۔ یہ ابھی آپ نے تھوڑا سا مشاہدہ کیا اس حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، اور یہ جو آپ کو مین یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایکچوئل، اس کو ہم کہتے ہیں سنگولیرٹی۔ انہوں نے بھی ورڈ استعمال کیا سنگولیرٹی کا، لیکن اس سے پہلے جو ہماری تاریخ کا وہیں والا سیشن چل رہا تھا کہ آئنسٹائن کے بعد جو نظریہ ہمارے سامنے آیا، آئنسٹائن نے صرف اتنا کام کیا، اس نے کہا کہ ہاں کائنات کا یہ ایکسپینشن اور اس کا کنٹریکشن، سکڑنا اور پھیلنا، یہ ممکن ہے، لیکن اس نے مزید کام اس پہ کرنے کا اسے ٹائم بھی نہیں ملا، اور جو نظریہ اس نے پیش کیا تھا اس کے اندر کچھ نہ کچھ بعد میں ماڈیفیکیشن کی گئی۔ اس کے اوپر سب سے پہلے جس نے کام کیا وہ الیگزینڈر فرائڈ مین، اس نے تھوڑا سا جو ایکویشنز بنائی تھیں آئنسٹائن نے ان کو تھوڑا سا اس نے ماڈیفائی کیا، اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کی، اور بالآخر ایک نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی جو کسی حد تک اس بگ بینگ سے ملتا جلتا تھا، لیکن مکمل طور پر اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے بعد جو اہم ترین کام کیا اس کے اوپر 1927 کے اندر ہے، بیلجین ایک سائنٹسٹ تھے جن کا نام تھا لی میڈری، ایل ای ایم اے آئی ٹی آر ای، لی میڈری۔ اس نے اہم ترین انداز میں، بالکل عجیب و غریب انداز میں، جو باقاعدہ آئنسٹائن کے نظریات تھے، جو تھیوریز تھیں، اور الیگزینڈر فرائڈ مین کا جو کام کیا ہوا تھا اس نے اس کے اوپر مزید ورک کیا، اور ورک آؤٹ کرنے کے بعد اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جو ایکچولی یہ بگ بینگ ہے۔ اس نے بگ بینگ کا ورڈ استعمال نہیں کیا تھا، یہ یاد رہے، اب یہ میں بات کر رہا ہوں 1927 کے اندر، یہ یاد رہے، اور بگ بینگ کا ورڈ استعمال ہونے لگا تقریباً 1949 کے اندر جا کر، 1948 کے بعد 1949 کے اندر، یعنی جیسے ہی یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے، اسی دوران اس نے ایک اور شخص نے، ایک اور سائنٹسٹ نے اس طرح کا ایک ورڈ استعمال کیا، لیکن 1927 کے اندر اس نے یہ پیش کر دی تھی، ایکچوئل جو تھیوری تھی وہ یہ تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ کائنات کا ایک شروع میں جو نقطۂ آغاز تھا، ایک بالکل چھوٹے سے ایٹم کے ذریعے سے، جس کو اس نے نام دیا تھا پرائم وال ایٹم، پی آر آئی ایم ای وی اے ایل، ایٹم بنیادی تھے، جس کا اگر آپ ڈکشنری میں بھی جا کر دیکھیں تو آپ کو اس کی میننگ نہیں ہے، بنیادی ترین ابتدائی ترین نقطۂ آغاز ایک ایٹم تھا۔ اور ابھی آپ کو بتایا انہوں نے کہ اس ایٹم کا جو والیوم ہمیں نظر آ رہا تھا، حجم نظر آ رہا تھا، کتنا تھا؟ سوئی کی نوک سے بھی ہزاروں گنا چھوٹا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ आज भी अगर मैं आपके सामने कोई डॉट लगा देता हूँ बॉल पॉइंट के जरिए से, तो उसके अंदर भी अरबों खरबों एटम्स मौजूद होते हैं, याद है, यानी एटम इतना छोटा, ऐसी कोई चीज मौजूद थी उसके अंदर काफी डेंस किस्म का, बहुत ही ज्यादा कसीफ तरीन कोई मैटर मौजूद था। वो मैटर क्या था नहीं मालूम, लेकिन था। हुआ क्या कि उसके अंदर अचानक जो टेम्परेचर है उसका, दर्जा हरारत है, वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। उसी के अंदर इतना ज्यादा बढ़ा, बल्कि मैंने एक बुक के अंदर रीड किया, अरबों खरबों डिग्री केल्विन, जो अफराद जानते हैं, एक तो सेल्सियस है उसमें हम इसको नापते हैं टेम्परेचर को, लेकिन जब हम साइंटिफिकली नुक्ता निगाह से देखते हैं तो हम केल्विन के अंदर टेम्परेचर को नापते हैं। अरबों खरबों डिग्री केल्विन उसका टेम्परेचर था, और उस टेम्परेचर की वजह से अचानक क्या हुआ, धमाका हुआ। ये धमाका लफ्ज जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं असल में ये गलत है, ये इंशाल्लाह मैं आगे आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा उसके अंदर असल में क्या बताया गया। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है इन्फ्लेशन का। क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि ये बैलून होता है जो गुब्बारा होता है, वैसे तो बिल्कुल सुखड़ा हुआ सा होता है, लेकिन अगर मैं इसी के अंदर हवा भरना शुरू करूं, इसके अंदर एयर को पंप करूं, तो क्या होगा, अब गुब्बारा फैलना शुरू होगा। ये असल में है ये काम एक्सपेंशन का, एक्सप्लोजन का। धमाके की वजह से अचानक शिद्दत के साथ इस तरह का ये जो मंजर आपको दिखाई दे रहा है ये यहां से हुआ। इस जगह से पहले जो काम हो रहा था हम उसको कह रहे थे सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है, वहदत, यकजान होना, मिला हुआ होना। सिंगल सिंगुलैरिटी वहदत, यानी इसका मतलब ऐसी सिंगुलैरिटी जिसको तकसीम करने का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं था, वहदत इबादत थी बस। फिर उसके अंदर ये सारा का सारा काम हुआ और इस तरह से नुक्ता आगाज कायनात का हमारे सामने जो नजरिया था वो पेश आया। यहां से आगाज हो रहा है कायनात की एक्सपेंशन का और फिर इस तरह से अरबों खरबों। अच्छा, यहां पर ये एक बात और भी कि इन्होंने कायनात के हवाले से इन्होंने भी तस्करा किया और हम भी आपको बताते चले कि कायनात की फिर एज क्या है इस वक्त। एक तो ये एक्सपेंशन होना शुरू हुआ और फिर सारी की सारी कायनातें और ये खुद ब खुद ये सारा का सारा सेटअप होना शुरू हुआ, सारी की सारी चीजें बनना शुरू हुई, कहकशाएं भी वजूद में आई, क्लस्टर्स भी मौजूद में आए, नोवास भी मौजूद वजूद में आए, इसी तरह के सुपर क्लस्टर्स मौजूद वजूद में आए और बाकी सारी की सारी बड़ी बड़ी बॉडीज जितनी भी मौजूद हैं कायनात के अंदर जो हमें नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी चीजें वजूद में आती चली गई और कायनात फैलती से फैलती तक चली गई और आज तक भी इसी तरह से फैलती चली जा रही है। ये धमाका हुआ कब था, इसके हवाले से जो एस्टिमेशन की गई, तकरीबन कहा जाता है कि 14 बिलियन ईयर्स अगो। वैसे जो एक्यूरेट रेंज है उसकी कहा जाता है कि 13.2 से लेकर 13.9 तक लाइट ईयर्स। अच्छा, ये 13.9 यानी तकरीबन हम कह रहे हैं कि 14 बिलियन यानी 14 अरब साल पहले। ये हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई इसकी एस्टिमेशन के लिए ये कुछ और तरह की थी जिसको हम कहते हैं माइक्रोवेव बैकग्राउंड, उसके लिहाज से हमारे सामने ये कैलकुलेशन है। लेकिन किसी और तरह से भी कैलकुलेशन करने की कोशिश की गई, ये हमारे जो जियोलॉजी के बिरादरान हैं, अगर आप में से कोई मौजूद है जो इस फील्ड से वाबस्ता हो तो वो इस चीज़ को बता सकेगा कि अगर मुझे नापना हो कि पत्थर की एज कितनी है, एक हमारे सामने अगर पत्थर है उसकी मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसकी एज कितनी है, तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ, कार्बन डेटिंग वगैरह का लफ्ज़ भी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर उस तरह से मुझे उसके लिए, या कुछ और होता है कि एलिमेंट्स की हाफ लाइफ। ये अल्फाज अगरचे मुश्किल है, बहरहाल अगर समझ में ना आ रहे हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हमारे बाकायदा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो अगर इनको आप मिस भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती थी कि पूरा का पूरा पीरियड इसका कितना है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन उसके लिहाज से जो मैं दूसरी टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ उसके लिहाज से जब एस्टिमेशन करने की कोशिश की गई तो तकरीबन ये सिलसिला जाकर बनता है कोई 16 से 17 अरब साल पहले का, तो उस वक्त यानी गालिबा करीब करीब है। जब इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा हो तो 2-3 अरब साल का भी अगर फ़र्क आ जाए तो वो लोग इसको किसी हद तक तस्लीम करने की कोशिश करने के लिए तैयार, यानी गालिबन किसी ना किसी हद तक करीब से करीब तर हैं, जो मुकम्मल एक्यूरेट हैं उससे करीब से करीब तर हैं। अच्छा, ये भी जो हमारे पास एस्टिमेशन मौजूद है आया क्या एक्यूरेट है, बिल्कुल यही हुआ था, बिल्कुल 13.2 से लेकर 13.9 बिलियन ईयर्स अगो की ये जो हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई यही है हमारे पास टाइम पीरियड, नहीं, इसके अंदर आगे पीछे की गुंजाइश मौजूद है। बारह, अच्छा अब आ जाएं हम इसी कायनात के अंदर, जिस कायनात को हम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसका आपके सामने बायोडाटा बयान करने की कोशिश करता हूँ। एक तो एज के हवाले से तो ये बात आपके सामने आ गई कि कब ये हुआ था, तकरीबन 14 बिलियन ईयर्स अगो ये हो गया। लेकिन उस वक्त से जब ये कायनात फैलना शुरू हुई तो आज ये कितनी फैल चुकी है, इसका डायमीटर कितना है? अजान मोहतरम, बिरादरान मोहतरम, वाकई आप ये सुन के हैरान होंगे कि कितना डायमीटर से मुराद ये होता है। इंशाल्लाह आप में से बहुत से अफराद इस चीज़ को समझते होंगे कि अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ, सर्कल के एक पॉइंट से, ये मेरे पास पूरा सर्कल है, सर्कल के एक पॉइंट से यहाँ तक का ये जो फासला होता है इसे मैं कहता हूँ डायमीटर। उर्दू में उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कोथर, कौफ, ता और रा के साथ। और सेंटर जो है इस सर्कल का, उससे लेकर उसकी बाउंड्री तक का ये जो पोर्शन है, ये जो लेंथ है, इसको हम रेडियस कहते हैं। पूरी कायनात के एक्सपेंशन के लिहाज से इस वक्त जो फासला बताया गया है कि पूरी कायनात का मौजूदा वक्त के अंदर जो फासला मौजूद है वो है 93 बिलियन लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है ये मैं बताता हूँ पहले। आपको पता है कि रोशनी की रफ्तार, इस वक्त जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनमें से सबसे ज़्यादा तेज तरीन रफ्तार रोशनी की रफ्तार है, लाइट की रफ्तार। इतनी ज्यादा तेज रफ्तार, एक सेकंड के अंदर आपकी पूरी जमीन के 7 चक्कर लगा सकती है ये। एक सेकंड के अंदर, विद इन 1 सेकंड, आपकी पूरी जमीन के 7 चक्कर लगा सकती है। लेकिन सूरज आपकी जमीन से कितना ज्यादा दूर है, इसी लाइट को सूरज से आपकी जमीन तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 7.5 से 8 मिनट लगते हैं। जिस रोशनी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज, लेकिन सूरज तकरीबन आपसे 14 से 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर जो मौजूद है, वहां से लेकर यहां तक पहुंचने में इसे टाइम लगता है 7.5 से 8 मिनट। इसका मतलब है इतना ज्यादा फासला मौजूद है। जब हमने मुशाहिदा करना शुरू किया तो बहुत से प्लैनेट्स ऐसे मौजूद थे जो इससे भी ज्यादा दूर थे, घंटों लगते थे लाइट को ट्रेवल करते हुए और हम तक पहुंचने में। बाज ऐसे हैं कि जिनमें महीना लगता है, पूरा पूरा एक महीना। बाज ऐसे हैं कि जिसमें साल लगता है। अब रोशनी पूरा एक साल सफर करती रहे और वहां से जहां से निकली है रोशनी और हम तक पहुंचे, ये पूरा का पूरा साल, इसको हम कहते हैं लाइट ईयर। एक साल के अंदर रोशनी जितना फासला ट्रेवल करे, तय करे, उसको कहते हैं लाइट ईयर। आप अंदाजा इसी बात से कीजिएगा, थोड़ा सा इमेजिन करने की इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करेंगे। खालिक कायनात ने इंसान को बहुत बड़ी ये सलाहियत अता की है कि इंसान अगर तसव्वुर करने पे है तो बैठे बैठे जन्नत को भी तसव्वुर कर सकते हैं, जहन्नम को भी इसी जगह बैठे। ये इमेजिनेशन की एक बहुत बड़ी पावर है इंसान के पास, तसव्वुर करने के लिए किसी भी चीज को तसव्वुर कर सकते हैं। अंदाजा करें कि एक सेकंड के अंदर पूरी जमीन के 7 चक्कर लगा सकते हैं, सूर्य का फासला इतना, लेकिन पूरे साल के अंदर रोशनी जितना फासला तय करे कितना ज्यादा होगा, उसको कहते हैं लाइट ईयर, नूरी साल उर्दू में उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप अंदाजा करें कि पूरी कायनात का डायमीटर वो बता रहे हैं, फासलों के अंदर नहीं बता पा रहे, मीटर्स किलोमीटर्स ये नहीं बता पा रहे, कैसे करें? वहां पर डिजिट्स ही हमारे पास इतने बड़े नहीं है। उन्होंने इस्तेमाल किया क्या वर्ड, 93 बिलियन लाइट ईयर। 93 बिलियन लाइट ईयर डायमीटर आपकी इसी पूरी कायनात का जो इस वक्त एक्सपेंड होकर हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, यहां पर और पूरी ये गैलेक्सी जो हमें नजर आ रही है। अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटा सा नुक्ता आगाज आपके सामने रखता हूं, आप इस तरह से इसे देखने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह परवरदिगार समझने की मजीद तौफीक अता फरमाएगा। हम क्या समझ रहे हैं, जिस जमीन के ऊपर हम रह रहे हैं ये कितनी बड़ी है? अगर इंसान अंदाजा करना चाह रहे हैं तो आप इसी बात से अंदाजा करें कि ये कायनात कितनी बड़ी है, हमारी कायनात यानी जमीन। सूरज के मुकाबले में अगर देखा जाए तो 12 लाख गुना छोटी है। यानी क्या मतलब? यानी मतलब यह है कि तकरीबन 12 लाख जमीनें आपकी आसानी के साथ समा सकती हैं सूरज के अंदर। अंदाजा कर रहे हैं आप, 12 लाख आपकी जमीनें आराम से समा सकती हैं सूरज के अंदर, सूरज आपकी जमीन से इतना बड़ा है। और यह भी याद रहे कि यही वाला एक छोटा सा नजरिया, अगरचे उसने बाकायदा कैलकुलेट नहीं किया था, जो मैंने आपके सामने यूनान के एक फिलासफर, मैंने कहा था कि 700 साल पहले जनाब ईसा से आना गजीमेंडर, उसका भी एक नजरिया था, उसने कहा था कि सूरज हमारी जमीन से बहुत बड़ा है तो छोटा नजर क्यों आता है? कहा कि हमारे हमसे और उसके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो छोटा नजर आ रहा है। उसने भी ये नजरिया पेश किया था लेकिन एग्जैक्ट ये फिगर नहीं बताई थी। आज हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 12 लाख जमीनें आपकी सूरज के अंदर समा सकते हैं, ये एक सूरज मौजूद है। लेकिन हमारी इसी यूनिवर्स के अंदर इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स भी मौजूद हैं कि हजारों सूरज मिलकर आराम से उसके अंदर समा सकते हैं। थोड़ा सा तसव्वुर कीजिएगा इस बात को, कितने बड़े वो होंगे प्लैनेट्स और स्टार्स वगैरह जिनके अंदर पूरा का पूरा हजारों की तादाद में अगर सूरज हो, लाखों की तादाद में उसके अंदर आराम से समा सकते हैं। तो फिर गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी वो है कि जिसके अंदर इस तरह के बड़े बड़े अरबों खरबों प्लैनेट्स और स्टार्स मौजूद हो, ये कहलाती है एक गैलेक्सी। और जो हमारी गैलेक्सी है हम उसे कहते हैं मिल्की वे, इस नाम से ये याद किया जाता है, ये हमारी मिल्की वे। इसका डायमीटर कितना है? ये हमने कायनात का आपके सामने डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर। अभी हम इस बात पे आ रहे हैं हमारी इस गैलेक्सी का अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कितना है, तो कहते हैं कि तकरीबन 30,000 बिलियन ईयर्स डायमीटर उसका, 93 उसका पूरी कायनात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और एक गैलेक्सी का दूसरी गैलेक्सी से फासला कितना ज्यादा है? तकरीबन कहते हैं कि 3,000 लाइट ईयर्स। अब ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये लाइट ईयर्स के अंदर रहेगी फासलों के हवाले से, क्योंकि फासले इतने ज्यादा हैं कि हम डायरेक्ट ये आम किलोमीटर्स के अंदर या माइल्स वगैरह के अंदर हम उनको नहीं नाप सकते, लाइट ईयर्स की बात होगी, इतना ज्यादा इसका फासला एक गैलेक्सी का दूसरे। और कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं? अनलिमिटेड है। अगर से उन्होंने फिगर शो करने की हमारे सामने कोशिश की है, तकरीबन इस तरह की खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं हमारे इसी यूनिवर्स के अंदर, सिर्फ हमारे इसी यूनिवर्स के अंदर। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह का ये कायनात का आगाज हुआ था उसी एक नुक्ते से, प्राइम वाल एटम के साथ, उसके जरिए से, और आज ये कायनात इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी कि उसके अंदर कैसी कैसी अजीबोगरीब चीजें मौजूद हैं और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां तक इंसान की निगाह अभी तक नहीं पहुंच सकी। बहरहाल अब यहां से एक और छोटी सी चीज हम आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे, वो क्या? ये जो नजरिया हम कह रहे हैं 1927 के अंदर इसने पेश किया था, इसने तो कहा था वर्ल्ड प्राइम वाल एटम का ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। लेकिन इसी को बाकायदा 1949 के अंदर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेड हॉयल, FREDHYL, फ्रेड हॉयल। उसने बीबीसी न्यूज को रेडियो कास्ट के दौरान, उसने बाकायदा इंटरव्यू के दौरान ये अजरा मजा उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था, जो प्राइम वाल एटम का नजरिया पेश करने वाले अफराद थे उनके ऊपर तनकीद करते हुए गया, क्योंकि इनका अपना एक नजरिया और था। इनका नजरिया यह था कि कायनात पूरी एक जिस तरह है इसी तरह से ही है, और पास्ट के अंदर भी यानी माजी के अंदर भी पूरी कायनात इसी तरह से रही है। हाँ, ये अलग बात है कि ये कायनात मूव कर रही है, इनके दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है, इस बात को तस्लीम कर रहा था, लेकिन उसका यह नजरिया था फ्रेड हॉयल का। और उसने तनकीद करते हुए बिग बैंग, उसने कहा अजीम धमाका, ये जो जैसे कह रहे हैं कि ऐसे अचानक उसके अंदर इन्फ्लेशन हुआ और ये पूरी की पूरी कायनात इस तरह से फैलती चली गई, उनके ऊपर तनकीद। लेकिन बाद में साइंसदानों ने उसके इसी वर्ल्ड को इस्तेमाल किया, कहा कि हाँ वाकई नहीं है, ये सही मुनासिब लफ्ज है और हम इसे ये इस्तेमाल करेंगे। फ्रेड हॉयल के इसी नजरिए को उन्होंने इस्तेमाल किया और कायनात के हवाले से ये सारा का सारा ये सिलसिला होना शुरू हुआ। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जरा इसे आगे लेके जाए, थोड़ा सा ये थोड़ा सा पीछे भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, मैं कुछ चीज़ इसमें से देखना चाह रहा जी। यहाँ पे आप ये देखिएगा, ये तो कुछ तो आपको स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह ये सारे के सारे कुछ ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं डार्क डार्क सी, ये बिल्कुल ब्लैक आसमान के अंदर ये कुछ तो आपको है स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो ब्लैक ब्लैक और सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये क्या चीज़ है, इसके हवाले से अब यहाँ पर रोक दीजिएगा इसे। ये क्या चीज़ है जो हमें ब्लैक चीज़ सारे के सारे नज़र आ रही है? कुछ तो हमें स्टार्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्लैनेट्स या गैलेक्सीज मौजूद हैं वो सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब से पहले नज़रिया ये था ये कुछ नहीं है, ये खिला है स्पेस। यहाँ पर अच्छा आकर मैं आपके सामने एक और टर्मिनोलॉजी भी बजात करता चलूँ, ये स्पेस और वैक्यूम हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वैक्यूम और स्पेस का, आइए ये दोनों वर्ड एक हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्यूम इस्तेमाल किया जाता है खुसूसन जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन के आई, उसके बाद से स्पेस और टाइम इन दोनों के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होता था वैक्यूम। वैक्यूम ये उसके अंदर वैक्यूम के अंदर ये पूरी कायनात ऐसे समझे मौजूद है, और स्पेस क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं इसमें। अच्छा, इसके लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है जमानो मकान, शुआरा हजरात भी अपने अल्फाज के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं जमानो मकान, और हम भी इस्तेमाल करते हैं जमानो मकान की जितनी भी सरहदें हैं या वसातें हैं, इस तरह के वर्ड आप सुनते रहते होंगे, ये जमानो मकान का लफ्ज स्पेस टाइम। ये क्या चीज है, ये सारी की सारी चीजें ज्यादातर जो हमारे पास आई हैं ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट हैं। अंदाजा कीजिएगा इस बात से कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद यानी 1915 के बाद से इतना ज्यादा जो काम हुआ गुज़िश्ता तकरीबन जो है ना 30 सालों के अंदर जो काम हुआ है वो इंतहाई ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा अजीब गरीब अंदाज में बेसिस उन्होंने फराहम की थी, बाकी ज्यादा तेजी के साथ काम ये लोग कर रहे हैं। क्या है, उन्होंने कहा कि ये जो हमें चीज नजर आ रही है क्या आया वाकई ये बिल्कुल खाली जगह है, स्पेस है, हम समझ रहे हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ, इसके अंदर फिजा है या खिला है जिसको हम कह रहे हैं। कहा नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और चीजें मौजूद हैं। फिर है क्या ये, कहा कि जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं मैटर की, मैटर मौजूद है, इसी तरह से एंटी मैटर भी मौजूद है, मैटर का अपोजिट एंटी मैटर, जिसको हम बाद में कहने लगे डार्क मैटर, ये डार्क मैटर मौजूद है। अच्छा, क्या फकत सिर्फ डार्क मैटर मौजूद है, कहा नहीं, इसके अलावा कुछ और चीज भी मौजूद है, जब डार्क मैटर है तो उसकी एनर्जी भी मौजूद है, जिसको हमने कहा डार्क एनर्जी, उर्दू में मैं अगर कहना चाहूं तो काली तवानाई, इसका ये मफहूम दिया मैंने, डार्क एनर्जी। इनका काम क्या है, डार्क एनर्जी अगर मौजूद है, डार्क मैटर मौजूद है, तो ये क्या काम कर रहे हैं। बड़ी अजीब और गरीब बातें, जब इंसान थोड़ा सा इस पे गौर और फिक्र करता है तो वाकई परवरदिगार की अजमतों तक पहुंचता है, हकीकत यही है। वो क्या, कहा कि इस पूरी कायनात के अंदर तकरीबन 74%, अब ये मैं पूरी कायनात के अंदर, अगर मेरे पास 100% कायनात है तो उसके अंदर 74% डार्क एनर्जी मौजूद है, 74% डार्क एनर्जी मौजूद है, और तकरीबन 23% डार्क मैटर मौजूद है, और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4%, ये जो आपको जितना भी मैटर नजर आ रहा है सारा का सारा ये 4% है। अब आप थोड़ा सा अंदाजा कीजिएगा, ये जितनी ज्यादा गैलेक्सीज आपको अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी चीजें 4% में शामिल हैं, पूरी कायनात के अंदर इनका रोल कितना है 4%, 23% डार्क मैटर मौजूद है, 74% डार्क एनर्जी मौजूद है, इन सब का कंबिनेशन है यूनिवर्स। काम क्या है, डार्क मैटर का काम क्या है, कहा डार्क मैटर क्या करता है, जिस तरह चीजें आपस में एक दूसरे से फैलती चली जा रही हैं, ये प्लैनेट्स स्टार्स या गैलेक्सीज आपस में एक दूसरे से दूर तर होती चली जा रही हैं, का डार्क मैटर इनको रोकने की कोशिश करता है, पकड़े हुए ज्यादा तेजी से दूर ना फैले। डार्क मैटर ये काम कर रहा है कि इनके तेजी के साथ जो इनके दरमियान फासला बढ़ रहा है उस फासले को कम करने की कोशिश करे, यानी रोकता है। एक चीज आप भी खींच रहे हैं, मैं भी खींच रहा हूं, जिसकी ताकत ज्यादा है वो अपनी तरफ खींच लेगा। डार्क एनर्जी इसी दौरान ये काम कर रही है कि वो उसे ज्यादा फैला रही है। एक गैलेक्सी का दूसरी गैलेक्सी के साथ जो फासला है बढ़ता चला जा रहा है, डार्क मैटर ये काम कर रहा है कि उनके दरमियान जो फासला है उसे कम करे। डार्क एनर्जी क्या काम कर रही है, उस फासले को मजीद बढ़ा रही है, वो एनर्जी है जो उसे दूर से दूर तक लिए चली जा रही है। और डार्क एनर्जी क्योंकि उसकी तादाद उसकी अमाउंट ज्यादा है 74%, इसी वजह से वो एनर्जी ज्यादा है और डार्क मैटर की एनर्जी को ओवरकम करते हुए कायनात मुकम्मल फैलती ही चली जा रही है। अच्छा जी, अब ये डार्क मैटर क्या है और ये डार्क एनर्जी क्या है, ये वो अहम तरीन सवाल आते हैं जिसके आज तक जवाब पेश नहीं किए जा सके। खुद है क्या, अगर कोई मैटर मौजूद है, अगर है तो क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जिस तरह ये मैटर हमारे सामने मौजूद है हम उसे टच कर सकते हैं, हम उसका टेम्परेचर, हम उसका प्रेशर, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डार्क मैटर वो क्या चीज है। यहां से एक साइंस की बिल्कुल लेटेस्ट अहम तरीन ब्रांच है और फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा एडवांस तरीन जिसको ब्रांच शुमार किया जाता है पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स का वजूद आता है यहां से। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट जमीन के अंदर भी तकरीबन कई कई मील लंबी टनल्स बनाई, उनके अंदर भी जाकर वो एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो डार्क मैटर का एक पार्टिकल भी हमारे हाथों में आ जाए ताकि हम उसके ऊपर मजीद रिसर्च वर्क कर सकें। दूसरी बात, इसी पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जब शुरू के अंदर बिग बैंग हुआ था तो वहां से इतने बड़े बड़े ये जो पार्टिकल्स बनना शुरू हुए, इसका मतलब है वहां पर डेंस, हम पहले भी कह चुके कोई डेंस मैटर मौजूद था, वो क्या था हमें नहीं मालूम। उसके फौरन बाद अब ये सारा का सारा मेरे ख्याल में एक पिक्चर भी मौजूद होगी, ये तीसरे चौथे नंबर पे, तो देखिएगा ये इसके फौरन बाद, इसके बाद एक छोटी सी बोल आइएगा, फिर ये बिग बैंग के अंदर हुआ तो ये था, फिर ये सारी की सारी इतनी बड़ी कायनात बनी कैसे, वो मैटर सारा का सारा वजूद में कहां से आया, कहा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, यहां से हमारे सामने वो पार्टिकल्स आते हैं जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स। लेकिन इससे पहले जो आपकी जानी पहचानी चीजें, मैं उसकी तरफ आपको लेके जाता हूं, आप कहते हैं एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हम कहते हैं प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, और उसके बाहर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। क्या फकत इतना है, बात इतनी सी है, सादा सी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सवाल फिर होगा नेक्स्ट आपसे कि प्रोटॉन ये किससे बने, न्यूट्रॉन्स ये किससे बने, और क्या फकत न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ यही पार्टिकल्स मौजूद है? नहीं है बिरादरान मोहतरम, नहीं, कई और पार्टिकल ऐसे दरियाफ्त हो चुके हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बाकायदा न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी की पूरी एक ब्रांच मौजूद है, हजारों लाखों किताबें इस वक्त इसी न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर मौजूद हैं, और सिर्फ अगर आप नेट पे जाके देखें तो आपको पेजेस नजर आएंगे, लाखों की तादाद में पेजेस मौजूद हैं सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। एटम जिसको आप देख ही नहीं सके आज तक, और उसके अंदर फिर न्यूक्लियस मौजूद है, वो कितना ज्यादा छोटा होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स मौजूद है, क्या फकत प्रोटॉन खुद वजूद रखते हैं? कहते हैं नहीं, ये कुछ और पार्टिकल्स हैं उनसे मिलके बने हैं जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स, QUARKS क्वार्क्स, उनसे मिलके ये बने हैं, और लेप्टॉन्स मौजूद है LEPTONS, और इन दोनों को अगर मैं मिला के कहूं तो मैं इनके लिए वर्ड इस्तेमाल करता हूं फर्मियंस। ये चीजें मौजूद हैं, ये कहना था असल में जब बिग बैंग हुआ था तो ये छोटे छोटे काम हुए थे, उनके नतीजे में सबसे पहले जो चीज वजूद में आई वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी वो कि जिसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन मौजूद था, न्यूक्लियस नहीं था, और ये हाइड्रोजन आपस में मिले, इसको हम कहते हैं जदीद टर्मिनोलॉजी में, आपने सुना होगा एक तो एटम बॉम्ब इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं फिजन रिएक्शन। होता क्या है, एक न्यूक्लियस है, मैं इसे दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूं, इसके जरिए से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मैं कहूंगा इसे फिजन रिएक्शन। लेकिन अगर ऐसा है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, यानी दो एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस को मैं आपस में मिला के एक बड़ा एटम बना लेता हूं, तो इसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और इसकी एनर्जी जो है एटम बम की एनर्जी की बनिस्बत हजारों गुना ज्यादा है, हजारों गुना ज्यादा। आप इसी बात से एस्टिमेशन लगा सकते हैं, अंदाजा कीजिएगा कि अगर एटॉमिक एनर्जी को हम यूज करते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाते हैं जिसको हम बिजली की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल एनर्जी है। अगर इसी तरह से हमने कोई फ्यूजन रिएक्टर बना लिया, फ्यूजन रिएक्शन के जरिए से कोई अगर हमने रिएक्टर बना लिया, तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि पूरी दुनिया की आधी एनर्जी हम फकत एक न्यूक्लियर रिएक्टर से हासिल कर सकेंगे। पूरी दुनिया को, यानी आधे हिस्से को उसके हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइट दे सकते हैं सिर्फ एक फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए से, अंदाजा कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्लैनेट्स के अंदर या गैलेक्सीज के अंदर आप जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वो फ्यूजन रिएक्शन है। इसी तरह से बड़े न्यूक्लियस बनते रहते हैं, छोटा न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हुआ, बड़ा बना, फिर वो आपस में कंबाइन होंगे और बड़ा बनता चला गया। ये आपके सामने मिसालें मौजूद है, ये छोटी छोटी चीजें आपको नजर आ रही है, वही पार्टिकल्स हैं जिनके हवाले से मैं बात कर रहा था। ये बड़े बनते चले गए और इस तरह से ये पूरी की पूरी फिर गैलेक्सीज और प्लैनेट्स वगैरह और ये स्टार्स वगैरह ये बनते चले गए, ये सारा का सारा इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। अब आप यहां से अंदाजा कीजिएगा पार्टिकल फिजिक्स का। अब यहां पर जमीन के ऊपर साइंटिस्ट जो रहने वाले मौजूद हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा मुमकिन है कि जिस तरह से ये पार्टिकल्स आपस में टकराए थे और कायनात वजूद में आई, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं या नहीं? अंदाजा कीजिएगा इंसानी जहन की वसअतों का, हम भी ऐसा कर सकते हैं? इसके लिए इतने बड़े बड़े, उसके लिए डिवाइसेस कुछ हमारे सामने डिजाइन की गई, उनको हम एक्सीलरेटर्स कहते हैं, पर वो एक अपनी जगह पर चीजें मौजूद हैं। हम यहाँ पर इंशाल्लाह इस चीज़ को बयान करने के बाद अब यहाँ पर इसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जो असल चीज़ की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा था, टाइम है मेरे ख्याल में कुछ आधा घंटा और है, उसके बाद आधा घंटा अभी ब्रेक करनी है, लेकिन मैं अगर आप लोग सब इस पे एग्री हो तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ अभी पिक्चर आपके जहन में है ना, इसी से रिलेट एक चीज़ है जो असल जिस चीज़ की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने अगर आप लोगों की तरफ से इजाज़त हो तो मैं 10-15 मिनट आपके ले सकता हूँ इंशाल्लाह। अगर सब एग्री है तो एक मरतबा दुरूद पढ़ लें। अच्छा, यहाँ पे आया, ये तो कायनात के एक्सपेंशन के हवाले से नजरिया। अब जल्दी जल्दी मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ जल्दी जल्दी आया, जिस तरह से ये कायनात फैल रही है इसका कोई नुक्ता अंजाम भी है या नहीं? ये तो नुक्ता आगाज था, उस वक्त से लेकर आज तक ये सारा काम हो रहा है, आया इसका कोई नुक्ता अंजाम भी है, क्या होगा इसके साथ अंजाम? इसके हवाले से हमारे पास 3 थ्योरीज मौजूद हैं। कहा कि जिस तरह से ये कायनात फैल रही है इसी तरह से दोबारा सुकड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब क्रैंक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बिल्कुल वही सिंगुलैरिटी जो शुरू में पॉइंट मौजूद था उसी पॉइंट की तरफ दोबारा चली जाएगी। एक नजरिया हमारे सामने ये मौजूद है, इसको हम कहते हैं बिग क्रंच। वो बिग बैंग था, ये बिग क्रंच लफ्ज होगा, दोबारा वही नुक्ते तक दोबारा पहुंचेगी, सिमटेगी और उसी नुक्ते तक दोबारा पहुंचने की कोशिश करेगी। क्रंच हम कहते हैं वो, जैसे कोई चिप्स वगैरह का वो इंसान उसे दबा ले और बिल्कुल वो सारा का सारा सिमट जाते हैं, क्रंच, ये बिग क्रंच होगा। पूरी कायनात दोबारा उसी सिंगुलैरिटी के अंदर आ जाएगी, एक काम ये होगा। एक नजरिया ये है कि कायनात के साथ आगे आने वाला हशर ये होगा। दूसरा नजरिया क्या है, कहते हैं नहीं, कायनात क्योंकि एक्सपेंड हो रही है, ये फैलती ही चली जा रही है, फैलती ही चली जा रही है और हमेशा इसी तरह से फैलती चली जाएगी और बिलआखिर इतना ज्यादा फैल जाएगी कि इसकी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, स्टार्स वगैरह का आपस में एक दूसरे से रابطہ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और एनर्जी जब बिल्कुल खत्म होगी तो उसे हम कहते हैं हीट डेथ या मैटर फ्रीज या बिग फ्रीज। बिग फ्रीज, फ्रीज से मुड़ा यानी ठंडा हो जाना, यानी कुछ चीजों का वजूद ही नहीं रहेगा, इस तरह से दूर तर होती चली जाएंगी और जो बिग फ्रीज वाला काम है वो हो जाएगा, हीट डेथ हो जाएगी, यानी हीट एनर्जी जिसकी वजह से वजूद होता है चीजों का वो सारी की सारी हीट खत्म हो जाएगी, एक काम ये होगा। एक और है नजरिया, तीसरा नजरिया, उसको हम कहते हैं बिग रिप, RIP रिप। इसका क्या मतलब है, कहा कि ये जितना का कायनात के अंदर नज्म जब्त मौजूद है ये सारा का सारा बिगड़ जाएगा, चीजें एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी और इस तरह के सारा का सारा कायनात का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ये कायनात के नुक्ताए अंजाम के हवाले से हमारे सामने नजरियात मौजूद है। अब जो सबसे अहम तरीन चीज जिसकी तरफ मैं आपको लेके आना चाह रहा था वो क्या है, कुरान की निगाह में क्या है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। लेकिन इसको बयान करने से पहले मैं चाहूँगा, ताकि हमारे ईमान में भी इजाफा हो और खालिक कायनात की अजमत हमारे दिलों में मजीद पैदा हो, इसके लिए बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ लें। लेकिन जब एक इंसान सोचता है तो हैरान हो जाता है कि ये क्या मामला है, बिग बैंग थ्योरी ये हमारे सामने आ तो गई लेकिन सारे सवाल के जवाब नहीं दे पाए। मसलन वो सबसे पहले जो सिंगुलैरिटी है वो कहाँ से आई थी, उसका वजूद कहां से आया, इसका कोई जवाब नहीं है हमारे सामने। दूसरी बात, इतना सही एटम था ना, इतना एटम, ये मैं इशारा कर रहा हूं उसके छोटा होने की तरफ, नहीं तो आप कह रहे हैं सुई की नोक से भी हजारों गुना ज्यादा छोटा, तो मैं उसे कैसे बताऊं आपके सामने, सिर्फ इंसान तसव्वुर कर सकता है, छोटा एटम था तो उससे इतनी बड़ी कायनात कैसे बन गई, छोटे से एटम के जरिए से ये सारा का सारा मैटर इतना बड़ी तादाद के अंदर ये पैदा हुआ, ये कैसे आखिर मामला हुआ, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है हमारे सामने, वो ये है कि जब किसी चीज के अंदर एक्सप्लोजन हो तो चीजें तो बिगड़ जाती हैं, नज्म ज़ब्त, खुदा ना करे किसी बिल्डिंग के अंदर अगर ऐसे अचानक ये एक्सप्लोजन हो और टेम्परेचर की वजह से बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, वो तो सारा का सारा बिगाड़ पैदा होगा, सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। लेकिन पूरी कायनात के अंदर हमें ये जो नज्म ज़ब्त नजर आ रहा है, हर एक एक चीज अपने मुअय्यन निजाम के अंदर, एक मुअय्यन ऑर्बिट के अंदर, एक मुअय्यन फासले के ऊपर फासला तय कर रही है, जरा सी भी गड़बड़ नहीं हो रही पूरी कायनात के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर, इसका क्या जवाब हम लाएंगे? ठीक, ये सारी की सारी चीजें हैं या ये सारे के सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक हमारे सामने नहीं आते, और मैटर और एंटी मैटर उसकी मैं बात कर चुका, और डार्क एनर्जी के हवाले से भी मैं वो बात आपके सामने बयान कर चुका। अब आइए इस हवाले से हम कुरान मजीद को देखते हैं। कुरान मजीद की वो सूरा जिसको हम इतना ज्यादा अहमियत नहीं देते, खुदा ना करें ऐसा हो, हम अहमियत नहीं देते, ये जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि हम उसको बस आम नॉर्मली जैसे होता है बच्चों की हिफाजत के लिए हम उसकी तिलावत कर लेते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सूरह फलक, چھوٹی سی سورہ ہے, لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس حوالے سے, کہا کہ پروردگار نے مجھے سب سے جو بہترین جو دو صورتیں عطا کی, ایک سورہ فلق ہے اور دوسری سورہ ناس, اس کے فوراً بعد والی یہ چھوٹی سی سورہ ہے. قل اعوذ برب الفلق, فلق کیا ہے؟ اب دیکھیں گے, اگر جا کر ٹرانسلیشن دیکھیں موجودہ ہمارے علماء کا بھی, اور زیادہ تر افراد نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی گزرنے کے بعد صبح کی جو روشنی نمودار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلق. اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق, صبح کی روشنی, سفیدہ صبح, طلوع صبح, اس کی جو یہ روشنی ہے اس کو کہتے ہیں فلق. بات صحیح ہے, لیکن اصل میں اس سے اہم ترین ایک مفہوم موجود ہے اور بھی. اگر ہم لغت کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اسی فلق لفظ کے بہت سے میننگ نظر آتے ہیں, اور اس کا ایک اہم ترین میننگ یہ بھی ہے کہ اچانک کسی چیز کا عدم سے وجود میں آ جانا. عدم کیا ہے؟ نہ ہونا, یہ فلسفے کی ٹرمینالوجی ہے, یہ یاد رہے, کچھ نہ تھا اچانک وجود میں آ جائے. آپ نے ایک خالق کائنات کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت بھی موجود ہے, فالق الحب والنوا, وہ ذات بابرکت وہ ہے. آپ تو ایک بیج ڈال دیتے ہیں نا زمین کے اندر, لیکن اسی زمین کے اندر وہ بیج اچانک پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے پورا درخت اور پودا وغیرہ بننا شروع ہو جاتا ہے. فالق, فلق, یہی والا ورڈ ہے, بالکل بیان ہے, کسی چیز کا اچانک وجود میں آ جانا, نہ ہونے سے وجود کی کیفیت میں آ جانا. یہ سب سے پہلا سوال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ سائنٹسٹ اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے کہ وہ پہلی چیز کیا تھی, کہاں سے وجود میں آئی. قل اعوذ برب الفلق, اے حبیب آپ کہہ دیں میں فلق کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. اب آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید انسان کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے. ایک یہ جملہ کہنے کے ذریعے سے انسان اس وقت سے کائنات کی ابتدا تک پہنچ جاتا ہے, فلق کے پروردگار کی. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ جو آپ ٹرانسلیشن کہہ رہے ہیں, اگرچہ یہ جو میں خود بھی آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں, کم از کم ابھی مجھے اتنا حق ہے کہ میں یہ جملہ کہہ سکوں, ٹرانسلیشن کے اندر یہ استعمال نہیں کیا گیا, لیکن ڈاکٹر نور حلوق باقی ہیں, ترکی کے ایک سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے بھی اس حوالے سے قرآن اور جدید سائنس کے حوالے سے ایک قرآن آیت, اسی آیت کے ذیل میں ایک بک ہے انہوں نے قرآن اور جدید سائنس, اس کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے, اور اس کے علاوہ ڈکشنری کے اندر جو الفاظ موجود ہیں ان کے نتیجے میں میں آپ کے سامنے یہ ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں. اچھا ایک تائید کے لیے میں مزید آپ کے سامنے اسی بے عین ہی اسی جملے کو, کہ اس کا یہ میننگ بھی ہے کہ اچانک کسی چیز کا وجود میں آ جانا, تفسیر نمونہ والوں نے بھی, یعنی تفسیر نمونہ ہمارے سامنے مشہور ترین تفسیر ہے, اسی کے علاوہ تفسیر میزان بھی موجود ہے علامہ طباطبائی صاحب کے بلاکی, وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے, انہوں نے بھی کہا کہ فلق کے یہ میننگ ہیں, لیکن ترجمہ کیا کیا, یہی ترجمہ کیا کہ طلوع فجر. طلوع فجر سے مراد یعنی اچانک, اچھا بالکل دیکھیں ترجمے کے اندر بھی ہم آنگ ہی ہے, ہم یہ نہ کہیں کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک جو میں کہہ رہا ہوں اور اتنی بڑی بڑی شخصیات نے وہ ترجمہ کیا وہ غلط کیا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, انہوں نے وہ سارے کے سارے نظریات پیش کیے. فلق, طلوع فجر, طلوع فجر کیا ہوتی ہیں؟ رات کے فوراً بعد اچانک روشنی کا آ جانا, یہ بھی وجود ہے. تاریکی ہوتی ہے, تاریکی یعنی نہ ہونا, اور روشنی یعنی ہو جانا, آ جانا, کچھ چیز کا نظر آ جانا, نور کا ہونا, وجود میں آ جانا, یہ طلوع فجر. ترجمہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح سے بعض افراد نے ترجمہ کیا کہ مخلوقات کا اچانک عدم سے وجود میں آ جانا, بالکل وہ ترجمہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر, لیکن اگر ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس کی گواہی آگے والی آیت موجود ہیں. آگے والی آیت آپ کو یاد ہوگا کہ آغا طباطبائی صاحب نے جب تفسیر میزان لکھنے کا ارادہ کیا تھا تو شروع میں مقدمے میں, کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسلیشن اب تو تین جلدوں کی موجود بھی ہے اس میں آپ اگر دیکھ لیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کی جانی چاہیے, اپنی طرف سے تفسیر نہ ہو. بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کوشش کرنے کی تفسیر کرنے کی کوشش کی, کہا کہ بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی جائے قرآن کی آیات کے ذریعے سے. اب یہاں پر ہمارے سامنے آگے والی آیت موجود ہے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جو چیز اس نے تخلیق کی, ما خلق, جو چیز کب تخلیق ہوئی, فلق کے نتیجے میں. اے حبیب آپ کہہ دیجئے گا میں فلق کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے خلق کی, ہر وہ چیز جو اس نے خلق کی. ما خلق کا یہ ترجمہ ہے. اب آپ اندازہ کیجیے گا جو جو چیز تخلیق ہوئی کب تخلیق ہوئی؟ فلق کے نتیجے میں, عدم سے وجود میں آ جانا. اور جو جو چیزیں وجود میں آ چکی ان کے جتنے بھی شرور ہیں, ان کے جتنے بھی نقصانات ہیں, ان سب سے میں اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. یہ آپ اس چیز کا جواب, کہ اگر آپ اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے کہ وہ سنگولیرٹی کہاں سے آئی, وہ پرائم ول ایٹم وہ کہاں سے آیا, تو وہ خالق کائنات کی وہ قدرت تھی کہ اس نے عدم سے اسے وجود بخشا. ایک یہ آیت. اب آئیے گا اس کے علاوہ ایک اور آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30, اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. عجیب و غریب آیت. کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, اولم یر الذین کفروا, وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, یرا کیا انہوں نے نہیں دیکھا, ان السماوات بتحقیق بے شک تمام آسمان, والارض اور زمین, کانتا رتقا, یہ دونوں باہم ملے ہوئے تھے. رتقن کا مطلب ہوتا ہے یکجان ہونا, بالکل پیوستہ ہونا, ایک ہونا, سنگولیرٹی. ففتقناهما, تو ہم نے اچانک ان کو جدا کر دیا. ففتقنا, فت کہتے ہیں, ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میرے سامنے یہ کپڑا موجود ہے, یہ ملا ہوا ہے آپس میں, لیکن اگر میں اسے اچانک جھٹکا دے کے ایسے پھاڑ ڈالوں, یہ کہہ رہے گا فت کرنا, جدا کر دینا اچانک شدت کے ساتھ. اندازہ کیجئے گا. اور قرآن لفظ کیا استعمال کیا ہے, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے جو کفر کرتے ہیں؟ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے, اگرچہ دیکھنا نگاہ غور و فکر کو بھی کہا جاتا ہے. کیا انسان نگاہ غور و فکر سے نہیں دیکھتا اس بات کو, کیا نہیں سمجھتا؟ لیکن یرا کا لفظ دیکھنے کے معنی میں, گویا ایسا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ انسان باقاعدہ کائنات کے اندر مشاہدہ کر رہا ہوگا. خصوصی طور پر یہ نہ ہمارے سامنے آئے ایڈوین ہبل ٹیلیسکوپ بھی ہے, جو فضا کے اندر اسپیس اسٹیشن بنایا گیا ہے, اس کے اندر جو اسکوپ یوز کی جا رہی ہے ٹیلیسکوپ, پروردگار نے اگر کبھی توفیق عطا کی تو اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ معصومین کا یہ علم محدود نہیں ہے, اس کے اندر بہت عجیب و غریب چیزیں موجود ہیں. کائنات کا علم ان لوگوں کی حد تک نہیں ہے, بلکہ خصوصی طور پر مومنین کے لیے, تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں. ابھی میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے, کچھ اور چیزیں بھی ہیں. تو جب سے یہ ہبل ٹیلیسکوپ کی بات ہوئی, اس وقت کے بعد سے انہوں نے جو مشاہدہ کرنا شروع کیا, تو اس کے نتیجے میں بہت حیران کن ہمیں نتیجے ملنا شروع ہوئے. وہاں سے وہ بگ بینگ کے حوالے سے اسے بھی سپورٹ ملتی ہے کہ ہاں وہ بگ بینگ والا نظریہ صحیح تھا. اب آپ قرآن کی اس آیت کا آپ ترجمہ دیکھیے گا, 1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت. کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ کائنات کے اندر یہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے, ہم یک جانتے ہیں, ففتقناهما, تو ہم نے اچانک ان کو جدا کر دیا. ہر ایک ایک چیز اپنی اپنی جگہ وجود میں آتی چلے گی. یہ وہ نظریہ اور آج کے بگ بینگ کا نظریہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے عین ہی یہی نظریہ ہے, یہ یاد رہے, کیونکہ اس کے اندر ابھی چانسز ہیں موڈیفیکیشن کے. یہ نظریات ہوتے رہیں گے, آگے چینجنگ آئیں گے. قرآن کے الفاظ کو بھی سمجھا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. ممکن ہے آج کے دور کے اندر ہم یہ جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, آئندہ آنے والے دور کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کے اندر فرق آ جائے. اس لیے بعض علماء کا نظریہ بھی یہ ہے کہ ہر سال قرآن کی ایک نئی تفسیر آنی چاہیے. جتنی تیزی کے ساتھ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, قرآن کی ایک نئی سے نئی تفسیر آنی چاہیے, تاکہ لوگوں کے سامنے گہرا سے گہرا مفہوم. قرآن کا یہی ایک بہت بڑا موضوع ہے, قیامت تک اسے باقی رہنا ہے, اور ہر قسم کے افراد کی ذہانتوں سے آگے قرآن ہمیں نظر آئے گا, رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا. ایک یہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے کہا بگ بینگ کا یہ نظریہ کہ اچانک ہم نے ان کو جدا کر دیا اور چیزیں پھیلنا شروع ہو گئیں. بگ بینگ کا یہ نظریہ, ہاں چیزیں پھیلتی چلی گئیں. اب قرآن کی یہ آیت دیکھیے گا, سورہ زاریات کی آیت نمبر 47, آیت نمبر 47, اس کے اندر خالق کائنات کہہ رہا ہے, والسماء بنیناها بأیدٍ وإنا لموسعون. یہ جو آسمان جسے تم دیکھ رہے ہو, اسے ہم نے اپنی قدرت سے بنایا. بےعدین اصل میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہاتھوں کے ذریعے سے, لیکن یہ استعمال ہوتا ہے خالق کائنات کے لیے قدرت. ہم نے اسے اپنی قدرت کے ذریعے سے بنایا, اور بے شک ہم اسے وسعت دے رہے ہیں. لمو سے اون, ہم اسے وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں, ہم اسے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. ففتقناهما, وہاں سے ہوا, چیزیں ملی ہوئی تھیں, ہم نے جدا کیا, اور اس کے بعد ہم اس کو وسعت سے وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں, یعنی ہم وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ قرآن کی یہ ہے سورہ زاریات کی. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور آیات بھی اس سے ریلیٹڈ موجود ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ بعض جگہوں پر اتنی زیادہ وسعت ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ 66,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے دور تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. 66,000 کلومیٹرز एक सेकंड के अंदर इतनी तेजी के साथ, स्पीड के साथ ये चीजें आपस में एक दूसरे से दूर तक होती चली जा रही। अजमतें हैं उसी परवरदिगार के लिए। और एक और चीज जो आखिर में कायनात के हवाले से जो नजरिया मौजूद था कि आखिर में कायनात का अंजाम क्या होगा, इस हवाले से मैं कुरान की एक आयत आपके सामने पेश करता हूं। और वो क्या है, कहा कि यौमन अतवी समा का तय सिजिल्ले, कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 104 है, कतय सिजिल्ले लिल कुतुब कमा बदाना अव्वल खल्क नुईदो। इसका तर्जमा क्या है, कहा कि जिस तरह से एक बुक होती है उसके पेज को बिल्कुल समेट दिया जाता है, मसलन मेरे सामने ये अगर मौजूद है तो मैं इसको लपेट देता हूँ, ये ऐसे इसे फोल्ड करना शुरू कर देता हूँ, बिल्कुल आखिर में ये इकट्ठा हो जाएगा, इसको कहते हैं नतविस समा। हम कायनात को यानी समा को, आसमानों को इसी तरह से समेट देंगे जैसे किताबों के औराक को आपस में समेटा जाता है। और इसी के साथ साथ कमा बदा अना अव्वल खल्क, किस तरह से समेटेंगे, जिस तरह से हमने इसका आगाज किया था बिल्कुल उसी तरह से, जैसे हमने बदाना, हमने खालिक कायनात का एक नाम है बदी मुबदी, खालिक कायनात का एक नाम है खालिक, ये याद रहे, और एक है बेदाल या ऐन के साथ बदी उस समावाते वाला, याद रखिएगा इन वर्ड्स के अंदर अजीब गरीब नजाकतें मौजूद है, खालिक का तर्जमा कुछ और है, बदी ऐन के साथ कुछ और है, और बदी बादाल हमजा के साथ कुछ और है। हमने जिस तरह से आगाज किया था बिल्कुल इसी तरह से हम उसे दोबारा पलटाएंगे, ये कुरान की आयत मौजूद है, जैसे आगाज हुआ था जिस तरह से आगाज है उसी तरह से हम उसे पलटाएंगे भी सही, और आखिर में उसी नुक्ता अंजाम की तरफ उसे लेके जाएंगे। अब इसके अंदर क्या मामलात हैं, ये एक छोटा सा मैं आपके सामने, कुरान के अंदर जो हमने काफी दिनों से हम इस चीज पे देख रहे थे, कुरान के अंदर तकरीबन जमीन और आसमान की तखलीक से रिलेटेड 310 आयात मौजूद हैं। अंदाजा कीजिएगा आप इस बात से कि जिस जिस आयत के अंदर बाकायदा समा और समावात के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, कुरान के अंदर कितनी आयात हैं, 310 के करीब आयात हैं। अच्छा, मैंने जिन आयात के अंदर शम्स इस्तेमाल हुआ, नुजूम की बात हुई, चांद की बात हुई, सितारों की बात हुई, मैंने उनको अभी इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर। 310 आयात ऐसी हैं जिनके अंदर बाकायदा समा और समावात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। यकीन माने अगर इंसान फकत और फकत इसी समा और समावात की ये इन 310 आयात के अंदर गौर और फिक्र करना शुरू करे, और खालिक कायनात ने भी 310 कुरान का अहम तरीन हिस्सा अंदाजा कर सकते हैं, और बाकी हिस्से को मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया कि जिसमें जमीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ या शम्स और कमर के लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैंने उनको अभी शामिल नहीं किया। समा और समावात के बाकायदा जिनके अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुए 310, उनके अंदर खालिक कायनात ने इनका तस्करा किया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना ज्यादा अहम तरीन मौजू है। अब आइए छोटा सा आखिरी पोर्शन इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है काफी अफराद थक चुके होंगे और सबसे ज्यादा तो मैं खुद ही थक चुका हूँ। बहरहाल आखिरी मौला कायनात का, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक छोटा सा जुमला इमाम का, और एक रिक्वेस्ट भी है मेरी कि इंशाल्लाह आप इसे जाके देखने की कोशिश भी करेंगे, मौला कायनात का नहजुल बलागा का पहला खुतबा। अल्लाह अकबर, परवरदिगार की हम्द व सना के बाद मौला कायनात ने कायनात की तखलीक के ऊपर बाकायदा बहस की, अजीबो गरीब अंदाज में वह बहस की। अंदाजा कीजिएगा हमारे यहाँ तो सिर्फ नहजुल बलागा का ये तर्जमा मौजूद है, ट्रांसलेशन मौजूद है, लेकिन ईरान के एक बुजुर्ग हैं मोहम्मद तकी जाफर साहब, उनकी नहजुल बलागा के ऊपर पूरी तफसीर मौजूद है, नहजुल बलागा की 25 जिल्दों पर मुश्तमिल। अंदाजा आप कर रहे हैं नहजुल बलागा की तफसीर 25 जिल्दों पर। इब्ने अबिल हदीद ने भी एक शरह लिखी थी, वो भी तकरीबन 20-25 जिल्दों पर। ये सुन्नी है राइटर जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूं, इब्ने अबिल हदीद, इसने भी शरह नहजुल बलागा लिखी इतनी जिल्दों पर मुश्तमिल, सिर्फ नहजुल बलागा के ऊपर। अब मोहम्मद तकी जाफर साहब का मैं देख रहा था मौला कायनात के खुतबे के अंदर, अगर ये है फारसी में, उर्दू में इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, लेकिन ये किताब आपको नजर आ जाएगी, उसमें काफी पेजेस के ऊपर उन्होंने कायनात की तख्लीक के ऊपर जितनी आयात मौजूद थी उनका भी तज़किरा किया, ज्यादातर आयात, यानी तकरीबन सारी आयात को कोड नहीं किया, लेकिन ज्यादातर कायनात की तख्लीक का आगाज कैसे हुआ, अंजाम कैसे हुआ, और मौला कायनात ने ये जो नजरिया कायनात की तख्लीक का पेश किया कुरान की किन किन आयात की रोशनी में पेश किया, यानी मौला कायनात का नजरिया भी अपना नजरिया नहीं था कुरान की रोशनी में, उन्होंने जो नजरिया पेश किया। बस आखिर में कुरान मजीद की वो आयत वकुल्ला शयइन अहसैनाहू फी इमाम मुबीन, कायनात के अंदर अंदाजा आप इस जुमले का इस बात से कर सकते हैं कि इमाम मुबीन के हवाले से कहा जा रहा है कुल्ला शैइन, हर चीज अहसैना हो, हमने महसूर कर दी उसके इल्म को, यानी महसूर कर दिया इमाम मुबीन के अंदर कुल्ला शै, خالق کائنات کے لیے آپ ورڈ استعمال کرتے ہیں ان اللہ علی کل شئن قدیر، کان اللہ علی کل شئن قدیرا، علی کل شئن، ہر چیز کے اوپر پروردگار کی قدرت اور طاقت موجود ہے۔ امام مبین کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے، کل شئن احسیناہ فی امام مبین۔ تو اگر میں کہنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کائنات کی تمام چیزوں جن کے اوپر خالق کائنات کی قدرت موجود ہے، ان تمام چیزوں کا علم دے کر خدا نے امام مبین کو بھیجا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میں زمین و آسمان، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اور بگ بینگ کے حوالے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کچھ اقوال آگے موجود ہیں، لیکن ابھی میرے خیال میں میرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پروردگار نے اگر توفیق عطا کی تو ہم جو ہے نا انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کسی اور وقت کے لیے، اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے صرف انٹروڈکشن اس حوالے سے پیش کیا ہے، باقی اس کے اندر تفصیلات تو بہت زیادہ موجود ہیں۔ اور یہ چیز پیش کرنے کا اصل میں ایک مقصد یہی تھا تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اس چیز کی آگاہی اور اس چیز کی عظمتیں کہ پروردگار نے کائنات کی طرف کتنا زیادہ متوجہ کیا، مذہب متوجہ کرتا ہے کائنات کے اندر، تاکہ آپ جو ہے نا اس میں غور و فکر کریں اور اس کائنات کے خالق کی طرف متوجہ ہوں کہ کون ہے وہ جس نے اس کو خلق کیا۔ بس وہ ٹرانسلیشن جو شروع میں میں نے آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کے اندر یہ اختلاف لیل و نہار، رات کا آنا، دن کا آنا، پھر چلے جانا، اس کے اندر آیات ہیں، نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے۔ اور صاحبان عقل کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام ہوں وقعود ہوں، اگرچہ کھڑے ہوئے ہوں تب بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں، والا جنوب ہیں، اور اگر پہلو کے بال لیٹے ہوئے ہوں تب بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا فقط ذکر کرتے ہیں؟ نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، چاہے کھڑے ہوئے ہوں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے پہلو کے بال ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ کائنات کی تخلیق ہے جو انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ کوئی اس کا خالق بھی موجود ہے۔ اسی لیے آخر میں مومنین کا جملہ یہ ہوتا ہے، پروردگار ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے اتنی بڑی کائنات کو اگر خلق کیا ہے تو باطل نہیں خلق کیا، بیکار خلق نہیں کیا، اس کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے۔ اب دیکھیں مذہب آپ کو اس طرف لے کے جائے گا، اس عظیم ترین طاقت کی طرف، جہاں پر جا کر انسان خود بھی عظیم ترین طاقت بن جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مذہب جو شمار کرانے والا تھا، آشنائی کرانے والا تھا کائنات کی، اسی مذہب کو ایک طرف کر دیا گیا، اور آج وہ ساری کی ساری ہمیں سائنس ہی نظر آ رہی ہے، اور جو حقیقی نظریات پیش کرنے والے افراد ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ کتنا بڑا ظلم و ستم ہے واقعا۔ میں ہسٹری دیکھ رہا تھا، یہ گوگل پہ آپ جائیں یا یوٹیوب پہ جائیں، تو میں نے جتنے نوٹس تھے، زیادہ تر میں نے کچھ چیزیں لی، ابھی میرے پاس نہیں ہے، وہ میں نوٹس دیکھ رہا تھا ہسٹری کے حوالے سے، اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، قرآن کی کسی آیت کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا، یا معصومین کے فرامین، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یا مولا کائنات کا یہ چیز، یہ نظریہ موجود ہیں، کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میڈیا بھی انہی کے ہاتھوں میں ہے، ساری طاقتیں انہی کے ہاتھوں میں ہیں، افراد بھی انہی کے ہیں، نظریات جو ہمارے ہیں انہی کو ہم سے لے کر وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش ہم میں سے کچھ ایسے افراد ہوں جو اس طرح کی کوشش کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ قرآن مجید ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا، خصوصاً اس حوالے سے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے گا۔ میرے خیال میں تو اسی پر اختتام کرتے ہیں، اگرچہ میں اسی کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کسی اور موضوع کے ساتھ بھی، امام کی ضرورت کے ساتھ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسا ہی ہے، امام کے ساتھ اس کا اتنا بڑا گہرا ریلیشن شپ موجود ہے کہ انسان حیران ہوگا۔ تبرکان اگر آپ کہیں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، میرے خیال میں ابھی ہے ٹائم، ہے ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، چلیں 5 منٹ ہیں، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، خصوصاً میرے خیال میں عاطف بھائی جو ہے نا کافی تھک گئے ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کائنات کی تخلیق کا ایک روحانی پہلو، عجیب و غریب ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ کسی عام شخصیت کی نہیں ہے، آغائے طباطبائی کی، تفسیر المیزان کی جلد نمبر 1 سے اور اس کے صفحہ نمبر 305 سے، جو اردو میں ٹرانسلیشن موجود ہے وہاں سے میں نے لی، اس کی عربی عبارت بھی موجود ہے، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے میں آپ کے سامنے، جب رسول خدا سے پوچھا گیا جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے، انہوں نے پوچھا رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے خالق کائنات نے کس چیز کو خلق کیا؟ تو اب رسول خدا کیا بیان کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے جابر خدا نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا، پھر اسی نور سے خیر و اچھائی کو پیدا کیا، جو بھی اچھائی جو بھی خیر جو بھی خوبی ہو سکتی تھی، اور وہ خیر کیا تھا ایکسپلینیشن نہیں ہے یہاں پر، آگے آ رہی ہے کچھ، اس کو پیدا کیا۔ کہا پھر اس نور کو جب تک چاہا اپنے سامنے اپنے مقام قرب میں، سب سے پہلا مقام ہے مقام قرب، خالق کائنات کی قربت بہت زیادہ نزدیک ہونا، جب تک چاہا اپنے مقام قرب میں رکھا، پھر اس نور کو ظاہر کیا، اس کی کئی قسمیں کی، ایک قسم سے عرش کو بنایا۔ یہ یاد رہے رسول خدا کے نور کے حوالے سے بات ہو رہی، جب تک چاہا اسے مقام قرب میں محفوظ رکھا، پھر اس کے بعد اس کے کئی حصے کیے، اس میں سے ایک حصے سے عرش کو بنایا، ایک قسم سے کرسی کو بنایا، واسعہ کرسی جو السماوات والارض، خالق کائنات کی کرسی، اس سے مراد اقتدار، عظمتیں ہیں، اس کا اقتدار کہاں کہاں تک ہے، اور ایک قسم سے عرش کو اٹھانے والے افراد کو خلق کیا، جنہوں نے کائنات کا یہ پورا کا پورا نظم و ضبط سنبھالا ہوا ہے، وہ طاقتیں اور وہ قوتیں ان کو خلق کیا۔ پھر کہتے ہیں چوتھی قسم کو جب تک چاہا اپنے مقام محبت میں رکھا، جب تک چاہا، پھر اس کو ظاہر کیا، اس کے کئی حصے کیے، ایک حصے سے قلم کو تخلیق کیا، ایک حصے سے لوح کو خلق کیا، ایک حصے سے بہشت کو، اور پھر چوتھے حصے کو جب تک چاہا اپنے مقام خوف میں محفوظ رکھا۔ پہلا مقام مقام قرب، دوسرا مقام محبت، تیسرا مقام خوف، جب تک چاہا اس میں محفوظ رکھا، پھر اس کو ظاہر کیا، اس کے کئی حصے کیے، اس میں سے ایک حصے سے فرشتوں کو، ایک سے سورج کو، ایک سے چاند کو، اور چوتھے حصے کو جب تک چاہا اپنے مقام رجا میں محفوظ رکھا۔ پھر اس کو ظاہر کیا، پھر اس کے کئی حصے کیے، ان میں سے ایک حصے سے عقل کو بنایا، عقل کو، وزڈم، ایک حصے سے علم و حلم کو تخلیق کیا، اور ایک حصے سے عصمت و توفیق کو خلق کیا۔ پھر چوتھی قسم کو مقام حیا میں جب تک چاہا محفوظ رکھا، اور جب مقام حیا سے اس کو ظاہر کیا تو اس پر اپنی نگاہ ہیبت ڈالی، اپنی نگاہ روبدار ڈالی، تو اس کی وجہ سے اس نور کے اندر سے 124,000 قطرے ٹپکے نور کے، اور خالق کائنات نے ان 124,000 قطروں کو نبی بنا دیا، اور کہا کہ جب ان نبیوں کے ان قطروں نے سانس لینا شروع کیا تو خالق کائنات نے ان کی سانسوں کے ذریعے سے اپنے اولیاء، اپنے شہداء اور اپنے صالحین کی ارواح کو خلق کیا۔ اس کے بعد آغا طباطبائی کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تصوفانہ باتیں ہیں، کوئی صوفی یہ باتیں کر رہا ہے، کہا کہ نہیں، واقعاً حقیقت ہے، یہ ان ہستیوں کی زبان سے ہمیں یہ الفاظ ملے ہیں جو خالق کائنات کے تمام پوشیدہ علوم کے وارث ہیں۔ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ لانے کی کوشش نہ کرنا کہ یہ بیکار ترین تفسیریں موجود ہیں یا بیکار ترین آیات موجود ہیں، نہیں، آنے والے دور کے اندر یا انشاءاللہ جب امام زمان کا ظہور ہوگا تب ان کی صحیح ترین تفسیر ہمارے سامنے آئے گی، اور وہ کیا ہوگی خالق کائنات بہتر جانتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا، دعا کر لیتے ہیں پروردگار سے، اے پاک پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، اے معبود برحق پروردگار، جو تیری خاص صفت ہے، صفت خالقیت، صفت بدیعیت، اے معبود تجھے اس صفت کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ بھیک مانگتے ہیں اے معبود کہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے۔ مولا کائنات کا یہی جملہ، الہی انت کما احب و فاجعلنی کما تحب، اے میرے معبود تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے معبود برحق تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنے بھی رموز پوشیدہ ہیں پروردگار، ان علم کو ہمیں حاصل کرنے اور اس علم میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جس طرح سے تو چاہتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہماری اولادیں ویسے بنیں، ایسے ہی غور و فکر کریں کائنات کی تخلیق میں اور تیری طرف متوجہ ہوں، پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں ویسا ہی غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ اے معبود برحق سب سے آخر میں تجھ سے دعا کرتے ہیں، جو ہماری سب سے بڑی حاجت ہے، جو ہماری سب سے بڑی دعا ہو سکتی ہے، وہ یہی، پروردگار دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اپنی آخری حجت امام صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے بھائیوں کو، امام کے خاص اصحاب و انصار میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.